प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ कोई है जो एक डोडज नई डोडज गाड़ी को चलाकर आया है जिसका लाइसेंस नंबर WX2129 वहाँ सड़क के उस पार खड़ी हुई है। उन्होंने अपनी गाड़ी की लाइट को और सब चालू छोड़ दिया है और यदि कोई उस कार को चला रहा है तो इसलिए आप जाकर अपनी लाइट को बंद कर दें। ये सड़क के बाई ओर खड़ी है, ठीक नीचे की ओर 8वें रास्ते पर है। मुझे लगता है यह एक नए एल्बनी गाड़ी का नंबर है जो WX2129 है, एक लाल रंग की डोडज, नई डोडज जो लगभग 1969 या कहीं आसपास की है और मैं नहीं जानता कि यह या वो यहाँ कहीं तो है या कहीं और, तो और बस जो कहीं और से है तो ठीक है यह था और इसलिए यह एक अच्छी बात है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि महिलाएं भूल जाती है क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ, तो ठीक है आज रात फिर से सभा में आना निश्चित रूप से अच्छा है और एक साथ मिलकर वचन के इर्द गिर्द एक अच्छे समय का होना। क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? ओह ये सही है, हम बस एक अद्भुत समय को बिता रहे हैं और अब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर इसे जारी रखने में हमारी सहायता करेगा। अब मेरे भाई ने जाकर और यहाँ एक ब्लैक बोर्ड लाया है लेकिन यह बहुत छोटा है, तब हम इसके पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो कल ठीक है मैं इसे यहाँ ठीक से लगाने की कोशिश करूँगा, इसे वहाँ ऊपर लटकाऊंगा और इसे ऐसा करूँगा। मैं इस पर कुछ अलग ही बातों को चित्रित करना चाहता हूँ जिसे मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए आप बस और जिससे कि आप बस सुनिश्चित हो जाएं कि आप वास्तव में इसे समझ सकते हैं। वहाँ था कल रात या कल या बीते कल ऐसा था, मेरी छोटी लड़की सारा, ये एक तरह से प्यारी है, उसकी माँ और मैं उसके छोटे से कागज पर देख रहे थे, वह मेरी बातों को लिख रही थी और उसने हर एक बात को बिल्कुल सही सही लिखा था, यशाया और मती और सब कुछ, और ठीक उस कागज के अंत में उसने लिखा था और मृत्यु कब्र को इसमें कोई और जीत प्राप्त नहीं हुई और मौत ने अपने डंक को पीछे खींच लिया था। वह लगभग 7 वर्ष की है और फिर उसने प्रकाशित वाक्य लिखने की बजाय उसने कहा क्रांतिकारियों की किताब अच्छा है, यह दर्शाता है कि वे किसी भी तरह कुछ तो समझने की कोशिश करने में रुचि रखते हैं, क्या वे नहीं रखते हैं? मैं सोचता हूँ कि भाई कॉलिंस की छोटी लड़की वह वहाँ पीछे बैठी हुई है और उन्होंने लिखा क्रांतियों के दिन, भाई नेविल कहते हैं वह उस बच्ची से सहमत है। मैं समझता हूँ कि हम सभी को ऐसा करना होगा, तो ठीक है हम वास्तव में एक महान समय को बिता रहे हैं। ओह प्रभु आशीष दे। मैं आज एक कमरे में सुबह को अध्ययन करने के लिए गया मेरे बच्चों के स्कूल जाने से ठीक बाद और थोड़ी देर पहले ही बाहर आया, बस ये एक अद्भुत समय रहा है। कल रात को एक तरह से देर तक अध्ययन भी करता रहा और सुबह के लगभग 2:30 बजे कुछ लोग उत्तर की ओर से यहाँ आए, उन्होंने हमें जगाया, एक छोटी लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे जगाया जो मर रही थी और मुझे यकीन है कि प्रभु उसे ठीक करेगा। वे बस वहाँ आ गए इतनी दूर बेडफोर्ड इंडियाना से विनती को करने के लिए कि एक छोटी लड़की के लिए तब प्रार्थना की जाए। 2 पुरुष कल रात की सभा में थे और जो इतनी दूर से वहाँ गाड़ी चलाकर आए, फिर इतनी दूर वापस चले गए, फिर से इतना दूर वापस लौट कर आए, शायद उनकी पूरी रात गाड़ी को चलाने में निकल गई और इसलिए यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि लोगों में इस तरह का परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा है। ओह यह एक महान दिन है जिसमें हम रह रहे हैं और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इन कलीसिया युगों में बस अधिक और अधिक जानेंगे। अब हम हर एक रात को थोड़ा जल्दी आरंभ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम जल्दी से बाहर निकलें। क्या आपको ये ठीक लगता है? और इससे लोगों को काम पर जाने को मिलेगा, वे घर पर पहुंच जाएं ताकि वे काम पर जा सके। पिछली रात को हम 9:05 ही हुए थे या किसी भी तरह से मैंने संदेश को समाप्त कर लिया था और इसलिए हम आज रात को हमारे साथ यहाँ आने वाले सेवकों को पाकर खुश हैं और मैं भाई जूनियर जैक्सन, भाई कारपेंटर और वहाँ की कलीसिया से हमारे भाई और बहुत से दूसरे लोग जो यहाँ मंच पर हैं और वहाँ सभा में हैं, और मुझे बताया गया था कि मेरा एक बहुत ही बहुमूल्य मित्र जो मेरे साथ मिशन के कार्य में था, भाई और बहन एंड्रू, जो बहुत ही दूर अंदर चीन में से थे, वे कल रात की सभा में थे। हमने पिछले वर्ष जमैका में एक साथ बहुत ही अद्भुत समय को बिताया था, हमारे पास एक महान समय था। मैं वहां उनके घर पर गया था और ओह यदि मैं सोचता हूं कि क्या भाई और बहन एंड्रू आज रात यहां इस सभा में मौजूद हैं? इस इमारत का निर्माण सही नहीं है इसलिए जी हां पीछे बहुत ही पीछे बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं क्या आप बस जरा सा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं भाई और बहन एंड्रू, बस कुछ समय के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपको भाई और बहन एंड्रू को देखकर बहुत खुश हैं। मैंने उन्हें पिछले वर्ष आने के लिए आमंत्रित किया था जब मैं वहाँ पर गया था। अब यह उनकी उपस्थिति में नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन मैं इसे अब नहीं कहूँगा, लेकिन ये वही है जिसे मैं सच्चा मिशनरी बुलाता हूँ। यदि वे कल रात में आते हैं तो उन्हें हमारे आने से ठीक पहले यहाँ बोलना होगा। मैं सोचता हूँ कि आप सुने कि वास्तव में एक मिशन के कार्य का क्या मतलब होता है। वे पीछे बहुत ही दूर अंदर की ओर रहते थे, इतना तक कि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वे, मैं सोचता हूँ कि यह वर्षों और वर्षों और वर्षों वे वहाँ पहले रहते थे और यहाँ तक उनके पास कभी भी एक गाड़ी भी नहीं देखी थी या एक ट्रेन या कुछ भी, और जैसा कि वर्षों और वर्षों तक। और किस तरह से बहन अपनी रोटी को बनाती, वह इससे किस तरह से थक जाती थी। और अब यही वास्तविक मिशनरी है। भाई एंड्रू के पास एक सुई और धागा था और वह एक डॉक्टर थे। वे उन सभी को सिल देते जब वे फट जाते। और मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे साथ ही बच्चे आ गए तो बहन एंड्रू शायद दाई थी और भाई एंड्रू डॉक्टर, वे केवल उन्हीं पर निर्भर थे। और फिर जब मिशन इंग्लैंड से, इंग्लैंड के पेंटिकॉस्टल मिशन, कहा कि वे कार्य क्षेत्र में वापस जाने के लिए बहुत पुराने थे। मैं अब आपको बताऊंगा कि वे कितने अधिक मिशनरी हैं। वे आराम कुर्सी को लेकर आराम से बैठने नहीं जा रहे थे, वे खुद से वापस चले गए जमैका में वापस जाकर, और अब मिशनरी के कार्य को कर रहे हैं। और भाई फ्रेड सॉटमैन और मुझे यहाँ उनके घर जाने का और उनके साथ भेंट करने का मौका मिला, और उन्होंने हमें क्या ही प्यार से भरा समय दिया जितना एक मसीह कर सकता है। और मैं आपसे बताता हूँ, मैं यह नहीं कहता हूँ मैं उनके जाने के बाद उन्हें पुष्पांजलि देने के बजाय अभी गुलाब की कली देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ वे वास्तव में मसीही है। और मैंने अपनी पत्नी को बताया कि बहन एंड्रू सबसे प्यारी, सबसे अच्छी मसीही महिलाओं में से एक थी, ऐसी महिला जिससे मैंने अब तक कभी भेंट की थी, और वह उसका चरित्र मसीह के अंदर भी ढला हुआ है, और भाई एंड्रू भी। इसलिए मुझे यकीन है कि यदि आप सभी ने उनको देखा है जो अभी खड़े हुए थे, तो मैं चाहता था कि यह कलीसिया उनसे अपने हाथों को मिलाए और उससे सुने इससे पहले कि यहाँ से वे चले जाएं। अब कल प्रभु ने चाहा तो, क्योंकि हम आने वाली कल रात को हम इस दूसरे कलीसिया युग पर आरंभ करेंगे, आज रात हम पहली कलीसिया युग पर आरंभ कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशीष को रखा है। और याद रखना, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कभी कभी इन चीजों पर हम उन पर असहमत हो सकते हैं जहाँ तक धर्मशास्त्र का संबंध है, और मैं अपनी ज्यादातर तारीखों को प्रमाणिक इतिहासकारों से लेता हूँ जो वास्तव में किसी भी पक्ष में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने केवल सत्य कथन को लिखा है, चाहे वह कुछ भी हो जो कलीसियाओं ने किया था। और मैं निश्चित रूप से, ये अनुवाद का दिव्य भाग है, मैं इसे अपने आप से वहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ उतनी अच्छी तरह से जितना मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। और कभी कभी यदि मैं उस तरह से थोड़ा कठोर या उतावली में बोलता हूँ तो मेरा ऐसा उस तरह से अर्थ नहीं होता है। हर कोई जानता है जो मुझे समझता है कि मेरा ऐसा करने का अर्थ नहीं होता है। मैं केवल चाहता हूँ, लेकिन एक नुकदार छड़ी को बनाने के लिए आप बस इस तरह से एक बोर्ड में एक कील को लगाएं। यदि आप इस पर वहाँ ऐसे ही किसी से बांध देते हैं तो यह नहीं टिकेगा। आपको इसे नीचे उतार कर और इस पर कील को ठोकना होगा, और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं असहमत होने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैं सारे संप्रदायों और इत्यादि के लिए बात करता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है। यह मैंने हमेशा ही कहा, ये पशुओं के ऊपर चिन्ह को बनाने के जैसा है। मुझे याद है वर्षों पहले मैं एक दिन बैठा हुआ था जब वे वसंत ऋतु में पशुओं को एकत्र करते थे, पशुओं को जंगल में ले जा रहे थे, और मैंने पशुओं को वहाँ ऊपर ले जाने में मदद की, जिसे वे खुला घूमने का बाड़ा कहते हैं, जहाँ हियरफोर्ड एसोसिएशन का घास खाना कहते हैं, जो ट्रबलसम नदी की घाटी है। और मैं अपने पैर वहाँ काठी के सींग के ऊपर लटकाए हुए बैठा हुआ था, वन के रखवाले की ओर देख रहा था, जैसे कि वह इन पशुओं को खुले बाड़े में से होकर ले जा रहे थे। अब आपको यही है, जब आप सरकारी संपत्ति पर जा रहे होते हैं और आपको टन घास उगाने में सक्षम होना चाहिए, इससे पहले चारा को खिलाने के लिए एक गाय को रखें, और हर एक पशु फार्म में बहुत सारा घास उत्पन्न करता है, तब उनके पास बहुत से पशु हो सकते हैं। अब उन पर सभी तरह के चिन्हों को लगाए हुए वे वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से कुछ के ऊपर बार एक्स लगा हुआ था। श्रीमान ग्रिम्स जो हमारे ठीक बगल में थे, वहाँ एक के ऊपर डायमंड टी था, एक हीरे के एक छोर पर एक टी था, वहाँ चिन्ह लेजी के था जो आगे प्रबलसम के नदी के ठीक ऊपर था, हमारा तुर्की ट्रैक था, हमारे ठीक नीचे टिपाई था, और उस फाटक से गुजरने वाले के ऊपर सभी तरह के चिन्ह लगे हुए थे और मैंने देखा कि वन के रखवाले ने कभी भी उन लगे हुए चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कभी भी उनकी तरफ नहीं देखा। कभी कभी वे चिन्ह गाय के दाईं ओर लगे होते थे, इसलिए वह चिन्हों को नहीं देख सकता था। और यह ऐसा नहीं था कि वह चिन्ह को देख रहा था, लेकिन एक बात का उसे यकीन था कि कोई भी गाय वहाँ से होकर नहीं गुजरती जब तक इसके कान के ऊपर लहू का चिन्ह नहीं होता। इसे एक पूरी तरह से हर्टफोर्ड के अच्छी नस्ल का पशु होना था या यह उस जंगल पर नहीं जा सकता था। उन लगे हुए चिन्ह से उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यह तो वो लहू का चिन्ह था। और मैं सोचता हूँ कि न्याय पर ऐसा ही होगा। यह ऐसा नहीं होगा कि कौन सा चिन्ह हम पहन रहे हैं, लेकिन वो तो उस लहू के चिन्ह के लिए देखेगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। अब क्या मैं थोड़ा गलत खड़ा हूँ? जीन, क्या मैं खड़ा हूँ? आवाज टकरा रही है, तो ठीक है, यह दोनों के बीच का अंतर है। क्या यह सही है? तो ठीक है, धन्यवाद भाई जीन, तो ठीक है। अब हम आज रात को फिर से बाहर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम कल रात वापस आ सकें और उन युगों के विषय को ले सकें। और मैं आपसे कहता हूँ, मेरे लिए उनमें से कुछ बातों को रोक सकना बहुत कठिन है जो मार्ग के किनारे पर वहाँ बिछी हुई है। बस कोशिश करूँगा कि एक रात में उन सभी को बाहर लाऊं। आप जानते होंगे यह मेरा एक प्रकार का स्वभाव है, लेकिन हमें इसे हर रात तक के लिए बस कुछ बातों को रोके रखना होगा। अब बस इससे पहले कि हम भव्य किताब को खोलना आरंभ करें, सोचता हूँ कि क्या हम बस कुछ क्षण के लिए खड़े हो सकते हैं, अपनी स्थिति को बदलेंगे जैसा कि हम खड़े हैं वे जो खड़े हो सकते हैं। और आइए अब हमारे सिरों को झुकाएं प्रार्थना के कुछ शब्दों के लिए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके महान पवित्र सिंहासन के पास आ रहे हैं। विश्वास को बिना हिलाए हुए आते हैं, क्योंकि हम आते हैं इसलिए हमें आने की आज्ञा मिली है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम किसी फलाना कलीसिया या एक संप्रदाय के नाम से आ रहे हैं या इस कलीसिया के नाम से या हमारे खुद के नाम से, क्योंकि हम इस बारे में दृढ़ नहीं होंगे कि क्या हम परमेश्वर से इसे सुनने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जब यीशु ने हमसे कहा, तुम मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो तो मैं इसे करूंगा, तो हम जानते हैं कि हम यीशु के नाम में आते हैं। आप हमारी सुनेंगे पिता। हम बहुत ही आनंदित होते हैं जब हम उन गुजरे हुए दिनों के शहीदों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने अपने लहू से अपनी गवाही को मोहर बंद कर दिया। फिर पिता, यह हमें महसूस करवाता है कि हम इस दिन में उनसे बहुत ही थोड़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारे लापरवाह होने के लिए हमें क्षमा करें, जैसे कि हम आपके कार्य के विषय में हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा नए सिरे से अभिषेक करें, जैसे हम आपके वचन को पढ़ते हैं और उस दुख को देखते हैं जो बीते हुए दिनों के बारे में होते आए हैं, ताकि जीवित परमेश्वर के इस महान छुड़ाई हुई कलीसिया के अधिनियम को पूरा करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात हमारे जरिए से हमसे बात करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कहना है। हम बस रुके हुए हैं और हम यहाँ इस प्रार्थना को इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम उसकी कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और हम मांगते हैं कि इन लोगों पर जो पवित्र आत्मा है वह आज रात उसकी सामर्थ को एकजुट करे और आगे हर एक हृदय में सुसमाचार को डाल देगा। यही हमें एक नया रुख और आने वाले युग के लिए एक नई आशा को देगा। इसे प्रदान करें प्रभु, क्योंकि हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ की कलियां खिल रही हैं और इसराइल एक राष्ट्र बन रहा है और अन्य जातियों के दिन कम होते जा रहे हैं और गिने हुए हैं। और आगे हम महान छुड़ाने वाले के आगमन की ओर देख रहे हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे बीच में चले फिरे प्रभु, जैसा कि आज रात बताया गया था आप धूपदानों के बीच में चलते हैं, तो आज रात हमारे बीच में चले प्रभु और उस आगे आने वाली बुराई के बारे में हमारे हृदयों को आगाह करें और हमें आपके वचन की समझ दीजिए, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने हर एक दिन को कहा है, मैं बस उतना ही लेने की कोशिश करता हूँ जितना मैंने कागज पर लिखा है। मुझसे जितना संभव हो सकता है बहुत से समयों, स्थानों और इत्यादि के लिए, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है जिस पर अब हम आ रहे हैं। यह एक इतिहास रहा है और अब हम समय के साथ आगे इसे आकृति में भी ला रहे हैं। अब रविवार सुबह और रविवार दोपहर को, या मेरा मतलब रविवार शाम को, हमारे पास एक शानदार समय था। मुझे यकीन है जो कि हमने बिताया है मैंने अपने आप में बिताया। और प्रकाशित वाक्य के अब हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? यीशु मसीह का प्रकाशन। और हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने प्रकाशन को दिखाया और वह कौन था। पहली बात जो हम देखते हैं सारे प्रकाशनों की कि परमेश्वर को जान लिया कि वह कौन था, कि यीशु त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति नहीं था, वह पूर्ण त्रिएकता में था। वह दोनों था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और वो प्रकाशन था। एक ही अध्याय में चार बार बोला गया कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, वह जो था, जो है और आने वाला है, दाऊद का मूल और वंश। अब हम देखते हैं कि इन चीजों में हम पूरे मामले को साफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हम कब इसे दोबारा सुनेंगे, शायद कभी नहीं, जब तक कि समय और नहीं रहेगा और अनंत काल में लुप्त हो जाएंगे। और अब जैसा कि मैं कहता हूँ, बहुत से भाई लोग और शिक्षक हो सकते हैं जो बेहतर निपुण होंगे, जो हो सकता है मेरी तुलना में अच्छा बोल पाते हों, और हो सकता है कि इससे बेहतर अनुवाद को कर सकते हों, लेकिन परमेश्वर ने इसे करने के लिए मेरे हृदय में स्थिर किया है, और इसलिए मैं एक ढोंगी होऊंगा यदि मैंने ठीक उसी तरह से नहीं कहा जो मैंने सोचा था कि यह सही था, समझे। तो मैं हमेशा ही परमेश्वर के सामने हर समय स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने छोड़ा नहीं है। के रूप में पौलुस ने कहा, मैंने रात दिन तक आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा, जिससे कि कलीसिया खड़ी हो सके। यदि कोई खो जाता है तो लहू मेरे हाथों पर नहीं होगा, क्योंकि मैं उस समय पर सारे मनुष्य के लहू से मुक्त होना चाहूँगा। सो यदि आप अलग हैं, इसलिए बस एक अच्छे मित्रता पूर्वक तरीके से कहूँगा यह ठीक रहेगा अब, लेकिन हो सकता है कि प्रभु कुछ ऐसा प्रकट करे जिससे हम सभी को एक साथ सहायता मिलेगी। अब पहली बात हम देखते हैं कि उसने खुद को प्रकट किया। अब हम समझते हैं कि वह कौन था। अब आगे जैसा कि मैंने छिड़काव और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा के बारे में वह हवाला दिया था, जो कैथोलिक बपतिस्मा है, न कि एक प्रोटेस्टेंट या नए नियम का बपतिस्मा। मुझे आशा है कि मैंने इसे साफ किया है। और मैं किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ जो वचनों से एक पद भी दिखाए जहाँ किसी को कभी बाइबल में ऐसा बपतिस्मा दिया गया था, या जब तक कि लौदिकिया परिषद नहीं बनी जहाँ उन्होंने कैथोलिक कलीसिया का गठन किया, कहाँ किसी को भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। कृपा आकर मुझे दिखाए, और मैं अपनी पीठ पर एक झूठा भविष्यवक्ता डाल दूंगा और रास्ते पर से चलूंगा। अब मैं केवल इसे बता रहा हूँ कि न ही कठोर होने के लिए, लेकिन बस आपको यह दिखाने के लिए कि यह सच्चाई है, समझे। अब फिर बाइबल ने उसे यहाँ प्रकट किया कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे बीच देहधारी हुआ, समझे। कोई पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं, यह तीन परमेश्वर नहीं है, या एक परमेश्वर तीन स्थानों पर कटा हुआ हो, यह तो एक परमेश्वर है जो तीन कार्य स्थानों में कार्य करता है, पितृत्व पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर अदन के बगीचे से अपने स्तर से नीचे आता है, मनुष्य के हृदय में वापस मार्ग बनाने की कोशिश करते हुए कि उनमें रहे और वे वापस उसके साथ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने। यही है परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हम में, यही अंतर है, समझे। और अब उन चीजों को और बाइबल ये प्रकट करती है, और ये प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में संपूर्ण रूप से कहा है, जो कि बाइबल में एकमात्र किताब, नए करार में, नए करार का पूरा धर्म सिद्धांत, एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें यीशु ने अपनी मोहर लगाई है, और उसने इस पर सबसे पहले कहा, धन्य है वह जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, और अंत में उसने कहा, यदि कोई भी मनुष्य इसका इसमें का कोई भी भाग निकालेगा या इसमें कुछ भी जोड़ेगा, तो वैसे ही उसका भाग भी जीवन की किताब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए यह किसी के लिए भी शाप है कि इसमें से कुछ भी निकाले, यह यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। तो यदि हम उसे तीन बनाते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, देखो आपका नाम निकल गया। और कोई भी, ना कोई प्रोटेस्टेंट, ना कोई भी प्रारंभिक कलीसिया कभी तीन परमेश्वर में विश्वास करता था। यह निसियन परिषद में का एक बड़ा मुद्दा था, और वे दोनों ही अलग छोड़ पर चले गए, इस तरह से बाहर, जैसा कि कहूँगा। वो त्रिमूर्ति त्रियात्मक लोग जो त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, जिसका अंत में कैथोलिक कलीसिया में गठन हुआ, वे पूरी तरह से त्रिएकता में चले गए, जो परमेश्वर को तीन लोग बनाते हैं। और वहाँ एक है जो कि यह विश्वास करता था कि परमेश्वर एक था, और वे एकेश्वरवादी बनकर दूसरे पक्ष पर चला गया। वे दोनों ही गलत हैं। परमेश्वर नहीं कर सकता। यीशु वो अपना खुद का पिता नहीं हो सकता है, और नहीं यीशु के पास एक पिता हो सकता है और वह वहाँ तीन परमेश्वर होंगे, यह काम नहीं कर सकता। क्योंकि यदि उसके पास एक पिता होता और एक पिता उसके अलावा एक और व्यक्ति है, तो उसके पास और दूसरा एक पवित्र आत्मा है, तो वह एक नाजायज बालक होता है। बाइबल ने कहा कि पवित्र आत्मा उसका पिता था, और यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तब ये पवित्र आत्मा नहीं है, यह पवित्र आत्मा के नाम में हमारे अंदर पिता है जो हमें कार्य स्थान का उपयोग कर रहा है, क्योंकि यह एक बार एक व्यक्ति में था जिसे आत्मा कहा गया और वापस आता है, और ये अब हम में है, वही यहोवा परमेश्वर। समझे, वहाँ कोई तीन परमेश्वर नहीं है, तीन परमेश्वर पागान और मूर्ति पूजक हैं, और इसे वहाँ पर लाया गया था। और यदि आप बस सप्ताह भर बने रहेंगे और पक्षपात नहीं करें, लेकिन ध्यान दें, इसके इतिहास को लें, उन्हीं इतिहासों को लें जो मैं लेता हूँ, या किसी के भी कोई भी इतिहास को लें, बस आइए इसे जानें कि सारे इतिहास उसी तरह सहमत हैं। उन इतिहासकारों का किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ सच्चाई को बताने में रुचि रखते हैं जो हुआ था। और सही तरह से देखें कि किस तरह से ये बात लूथर के जरिए से रेंगते हुए आई और वेस्ली के जरिए से बाहर आती है, और उसके बाद अंतिम दिनों में उजागर होती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा। तब देखें कहां पर यह कैथोलिक कलीसिया के अंदर आता है, उस अंधेरे युगों में लूथर के जरिए से आया, आगे वेस्ली के जरिए से आता है, लेकिन वेस्ली और लोदिकियन के बीच अंत में इसे उजागर होना था। यह सही बात है अब, और यह सब इतिहास में है, और न ही केवल इतिहास में है बल्कि यह बाइबल है। और अब आज रात हम सात कलीसियाएं युगों की ओर जा रहे हैं, जो सात कलीसियाएं थी जो किताब के लिखते वक्त एशिया के छोटे भाग में थी। उस समय पर यह कलीसियाओं के पास अवश्य ही उनकी अपनी कलीसिया युगों की विशेषताएं थी जो आने वाली थी, क्योंकि वह उस समय उसके अलावा और भी ज्यादा कलीसियाएं थी, कोलोसियंस कलीसिया और बहुत सी अन्य थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी विशेषताओं के कारण इन कलीसियाओं को चुना। और हम पाते हैं कि वो सात स्वर्ण धूपदानों के बीच में खड़ा हुआ था, उसके हाथ में सात तारे थे, और वे सात तारे उसने पहले अध्याय के 20वें पद में कहा कि वे सात कलीसिया के लिए सात दूत हैं। अब बाइबल में उन्होंने इस प्रकाशन को नहीं समझा, क्योंकि इससे उनका क्या भला होता कि वे देखें और रुकें, यदि वे जान भी जाते कि यीशु के आने से पहले हजारों वर्ष होंगे, यह प्रकाशन उन्हें नहीं देना था। और मैं यह कहता हूँ, यहाँ आप जो लोग हैं, आप जो कैथोलिक लोग हैं, आप जो लूथरन हैं, आप जो मेथोडिस्ट हैं और इत्यादि, इसे मार्टिन लूथर को नहीं दिया गया वह उजाला जो आज वचन पर है, ना ही यह जॉन वेस्ली को दिया गया था। जॉन वेस्ली ने पवित्रीकरण का प्रचार किया जो लूथर ने छोड़ दिया। और उजाला आता है जैसे जैसे हमें उजाले की आवश्यकता होती है, परमेश्वर इसे कहता है, और इसे यह हमारे लिए नहीं खुलता है, क्योंकि यह उस दिन तक हमारी आंखों के लिए छुपा हुआ है जिसे परमेश्वर इसे प्रकट कर सकता है। सोचता हूँ कि हमारे जाने के बाद यह क्या होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ बहुत ही बहुत ही बहुत ही अधिक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। यह सही है, वहाँ सात मोहरे हैं। यदि हम केवल प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को लेते हैं, जो कि किताब के पीछे मोहर बंद है, यह भी नहीं है, ये किताब में नहीं लिखा है। और इस कलीसिया युग के दौरान उन मोहरों को खुलना है और परमेश्वर के साथ आखिरी रहस्य को ज्ञात होना है। ओह, मैं बस इन बातों को सारे सर्दियों में रखना चाहूँगा और इसमें से होकर जाऊँगा। जी हाँ श्रीमान, सात कलीसिया के युग, जैसा कि दानियल ने सात गर्जनाओं को सुना और उसे मना किया गया, और यूहन्ना ने आवाजों को सुना और ये किताब मोहर बंद थी, और किताब के पीछे सात मोहरों से मोहर बंद कर दिया गया था, लेकिन इन मोहरों को खुलने के दिनों में परमेश्वर के रहस्य समाप्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उसकी कलीसिया में जाना जाएगा, न ही तीन लोगों में बल्कि एक व्यक्ति की नाई, परमेश्वर के रहस्य प्रकट किए जाएंगे, और जब यह पूरी तरह से प्रकट होते हैं तब सात रहस्य कलीसिया में खुल जाएंगे, क्योंकि वहाँ कलीसिया पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नीचे होगी, वो अंदर और बाहर आते जाते हुए और उसके जीवित होने के उसके चिन्हों को दिखाते हुए और हमारे बीच में हमारे बीच रहते हुए, और फिर हम जीवित मसीह की आराधना करते हैं जो हमारे बीच में है। बड़ी कलीसियाओं और बड़ी बड़ी चीजों के लिए कभी न देखें। जब हम इस पेंटिकॉस्टल युग में आते हैं तो आप निश्चय ही देखेंगे कि वे कहां पर खत्म हो चुके हैं। उसी कलीसिया लौदिकिया का अर्थ है धनी, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, और नग्न है, अभागी, अंधी, लाचार और इसे नहीं जानते हैं, समझे। वे बड़े धन और इमारतों और बाकी सबके पीछे एक तरह से चले गए हैं। जब कलीसिया हमेशा से ही धरती पर ठुकराई जाती रही है और यहाँ पर वे थे, सारे लोगों के द्वारा घृणा किए गए, बाहर निकाले गए गलियों में, वे कहीं भी रह सकते हैं। इब्रानियों 11 पढ़ें और इसके अंतिम 6 या 8 पदों को, कैसे वे लगभग रेगिस्तानों यहाँ वहाँ फिरते रहे और भेड़ों की खाल और बकरियों की खाल ओढ़े हुए और दीनहीन और पीड़ित और सताए गए, वहाँ वे लोग हैं। न्याय के दिन उन लोगों की गवाही के सामने हम हमारी गवाही को किस तरह से देंगे, देखो वे लोग जो उस दिन थे। अब इस कलीसिया युग में हमारे पास 7 कलीसिया हैं। अब मैं इसे स्थान पर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है कि यदि आप में से कुछ लोग देख सकें, मुझे संदेह है, लेकिन मैं इसे बताने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, वे जो यहाँ बैठे हुए हैं। इस 7 कलीसिया युगों को बताने की मैं इसे अपने हाथ पर पकड़ लूंगा, जिससे कि आप समझ जाएं। यह आरंभ होती है, यह कलीसिया पेंटिकॉस्ट में आरंभ होती है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? नहीं श्रीमान, कलीसिया पेंटिकॉस्ट पर पेंटिकॉस्टल की आशीष से आरंभ होती है और यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई ताकि निरंतर बढ़ती रहे अंतिम दिन तक उसी संदेश के साथ और वही आशीष हम में कार्य करते हुए। उसकी कलीसिया के लिए अंतिम आ गया, मरकुस 16, सारे संसार में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो, यह चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं। अब कहाँ कहाँ पर? सारे संसार में जाकर किसको? हरेक सृष्टि, काला, भूरा, पीला, सफेद, जो कोई भी सृष्टि थी, प्रत्येक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करना है, यह चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं। अब आज रात हम उस पर से किनारा कर रहे हैं, बस आज रात में काट काट करके आरंभ कर रहे हैं। हर रात इसके एक बड़े खंड को काटते रहेंगे जब तक हम आगे अपने स्वयं के कलीसिया युग के लिए नहीं आ जाते हैं। अब हम पाते हैं कि उसकी आज्ञा थी। अब पहली कलीसिया का युग एफिसस की कलीसिया थी, दूसरी कलीसिया का युग स्मुर्ना था, तीसरी कलीसिया का युग पिरगमुन था, चौथी कलीसिया का युग थुआतीरा थी, पांचवी कलीसिया का युग सर्दिस था और छठे कलीसिया का युग फिलाडेल्फिया था और सातवें कलीसिया का युग लौदिकियन था। अब पहली कलीसिया का युग लगभग 53 AD में आरंभ हुआ जब पौलुस ने एफिसस में कलीसिया की स्थापना की। उसकी मिशनरी यात्रा पर उसने एफिसस पर कलीसिया की स्थापना की, एफिशियंस कलीसिया, और वो उसका पास्टर था जब तक 66 में उसके सर को नहीं काटा गया था, जो लगभग उसे 22 वर्ष का एफिशियंस कलीसिया का पास्टर बनाता है। उसकी मृत्यु के बाद तब हमें बताया गया कि संत पौलुस या संत यूहन्ना वो दैविक कलीसिया का पास्टर बन गया और इसे इस युग में आगे लेकर गया और कलीसिया का युग 170 पर उसी समय पर एक के ऊपर एक आगे बढ़ता गया। फिर एफिशियंस कलीसिया युग के बाद जो 53 से 170 AD तक था, उसके बाद स्मुर्ना कलीसिया युग आरंभ हुआ जो 170 AD से 312 AD तक चला। उसके बाद पिरगमुन कलीसिया युग आता है और पिरगमुन कलीसिया युग 312 में आरंभ होकर और 606 AD तक चला। इसके बाद थुआतीरा कलीसिया युग आता है और उसके बाद थुआतीरा कलीसिया युग 606 से आरंभ होता है और 1520 तक चला जाता है, अंधकार के युग। और उसके बाद सर्दिस कलीसिया युग 1520 से आरंभ होता है और 1750 तक चला, लूथरन का युग। फिर 1750 से अगला युग आया जो फिलाडेल्फियन था, वेस्ली का युग, जो 1750 में आरंभ हुआ और 1906 तक चला। और 1906 लौदिकियन कलीसिया युग आ गया और मैं नहीं जानता कि कब यह समाप्त होगा, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह 1977 तक पूरा हो जाएगा। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, ना ही प्रभु ने मुझे बताया है, लेकिन मैं इसे एक दर्शन के अनुसार अनुमान को लगाता हूँ जो मुझे कुछ वर्ष पहले दिखाया गया था, जो कि उनमें से 5 चीजों 7 चीजों में से पहले से ही हो चुकी है। इस बारे में कलीसिया में कितने लोगों को वो दर्शन याद है? यकीनन यह कहा गया कि यहाँ तक कि इस अंतिम चुनाव में भी कैनेडी किस तरह चुने जाएंगे, कैसे महिलाओं को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, कैसे रूजवेल्ट दुनिया को युद्ध के लिए ले जाएगा, कैसे वो मुसोलिनी इथोपिया की ओर जाएगा और यह उसका पहला आक्रमण होगा और वो इसे ले लेगा, वह अंत होगा, उसके बाद वो मर जाएगा। कैसे ये बड़े बड़े वाद उठ खड़े होंगे और वे सारे वापस ताम्यवाद में चले जाएंगे, हिटलरवाद और मुसोलिनी और सह नाजीवाद और इत्यादि सारे साम्यवाद में वापस आ जाएंगे। और 11 वर्ष होने से पहले यह कहा कि हम जर्मनी के साथ युद्ध को करेंगे और जर्मनी किलाबंदी के पीछे दृढ़ बना रहेगा, जो मैगिनोट की रेखा है, यह बिल्कुल उसी तरह से हुआ। फिर कहा उसके बाद यह उस स्थान पर आएंगे कि वहाँ ऐसा होगा कि विज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जब तक वे एक ऐसी कार का आविष्कार नहीं कर लेते, वो कार हर समय अधिकतर करके अंडे के आकार के जैसी बन जाएगी। और उस दर्शन को ठीक यही बताया गया था जहाँ पर अब चर्च ऑफ क्राइस्ट खड़ा है, पुराने अनाथालय पर। चार्ली कर्न शायद आज रात इमारत में है, उस समय पर वे उस स्थान पर रहते थे। एक रविवार की सुबह लगभग 7 बजे यह घटित हुआ और इसने कहा तब वहाँ ऐसा होगा कि वे एक कार का आविष्कार करेंगे कि उन्हें इस कार में चालन चक्र या स्टीयरिंग व्हील की आवश्यकता नहीं होगी, इसे किसी प्रकार की शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उन्हें अब यह मिल गया है चुंबकीय शक्ति में, जो रडार के द्वारा नियंत्रण होती है। वे यहाँ तक ऐसा भी नहीं, बस अपने रडार को तैयार करें कि आपको कहाँ जाना है, यह आपको खुद ब खुद ले जाता है, आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब और इसमें बताया गया उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी महिला खड़ी हो जाएगी और वह अच्छे कपड़े पहने हुए और सुंदर महिला थी, लेकिन वह कठोर हृदय थी। और मैं दर्शन पर व्याख्यात्मक में चला गया, यहाँ तक कि ये पीले कागज पता कर रहा हूँ, कहा शायद कैथोलिक कलीसिया, और महिलाओं को वोट करने की अनुमति दी जा रही है जिससे इस राष्ट्र के लिए गलत व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता मिलेगी, और उन्होंने यही किया है बिल्कुल वैसे ही। अब कहा यह शुरुआत होगी। अब एक और बात यह कही गई कि उसके तुरंत बाद ही मैंने देखा कि यह राष्ट्र एकदम घुटने के समान बन गया है, बस टुकड़े होकर फट गया है। अब यदि वे चीजें हो चुकी हैं, वैसे ही ये दूसरी होंगी। हम यही कारण है कि आज रात मैं इसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे जेफरसन विले के लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द फिर से मिशन के कार्य क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ और नहीं जानता कि किस समय पर मुझे हो सकता है बुलाया जाए या उठाया जाए। हम यह नहीं जानते और मैं यह पक्का करना चाहता हूँ कि मैं कलीसिया जान जाए कि वे किस समय पर जी रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अब इन कलीसियाओं में प्रत्येक के पास वहाँ वचन के अनुसार एक दूत था, और दूत एक, कितने जानते हैं कि एक दूत का मतलब क्या होता है, यह एक संदेश वाहक है, एक संदेश वाहक। और वहाँ 7 कलीसियाओं के लिए 7 दूत थे, मतलब 7 संदेश वाहक। अब और वे उसके हाथ में के तारे थे, और उसके हाथ में ये 12, ये 7 तारे जो रात के उस दिन में उसकी उपस्थिति के उजाले को प्रतिबिंबित करने के लिए थे जिसमें हम रह रहे हैं। वे तारे सूर्य को धरती पर प्रतिबिंब करते हैं, ये प्रकाश को तैयार करते हैं ताकि हम चल सके और रात के समय पर यहाँ वहाँ जा सके। अब हम पाते हैं कि इस समय के दौरान इन दूतों में से हर एक के पास पद और स्थान था। और भाइयों, आज रात हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले कलीसिया के इस दूत को जानते हैं, लेकिन यह एक रहस्यमय और महिमामय बात होगी कि इसे जाने और आपके सामने इतिहास में से इन अन्य कलीसियाओं के दूतों के विषय में ढूंढ कर बाहर निकालना। पहली कलीसिया का दूत संत पौलुस था, उसने इसे स्थापित किया जो परमेश्वर का संदेश वाहक है। इफिसियस के कलीसिया का दूत संत पौलुस था। कलीसिया अब जो कारण में अब इन अन्य दूतों के लिए आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ दिनों और दिनों तक प्रेरणा के नीचे आकर इन्हें रखा है, जब तक कि मैंने महसूस नहीं किया कि पवित्र आत्मा ने मुझ पर नहीं खोला और इसके लिए मुझे अभिषेक किया। यही कारण है कि मैं जानता हूँ। और इन पुरुषों की ओर देखो जिन्हें लिया गया, यदि आप एक इतिहासकार हैं तो वे वही पुरुष जिन्हें मैंने यहाँ लिया है, और प्रकाशन के द्वारा जानता हूँ कि वे कलीसिया के दूत थे। उनके पास वही सेवकाई थी जो उन्होंने शुरुआत में की थी, और वह सेवकाई बदल नहीं सकती है, इसे पूरी तरह से वहाँ से होते हुए पेंटिकॉस बने रहना चाहिए। अब यहाँ बैठे हुए इतिहासकार इस व्यक्ति पर मुझसे असहमत होंगे, लेकिन इस मुर्डाना की कलीसिया में एरेनियस वह है जिसे मैं जानता हूँ जो उस दिन का दूत था। पॉलीकार्प, आप में से बहुत से लोग कहेंगे यह पॉलीकार्प था, मेरा मतलब आप कहेंगे यह वही था, लेकिन पॉलीकार्प संगठन के लिए और कैथोलिक के लिए अधिक झुक गया था, धर्म पर आ रहा था। लेकिन एरेनियस एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्य जुबान में बोलता था और उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी और चिन्ह उसके पीछे पीछे थे। वह परमेश्वर का उजाला दूत था और उसने उजाले को आगे खींच लिया। पॉलीक्रॉप को सूली पर चढ़ाने या उसे मार डालने हत्या करने के बाद तब इरेनियस उसके छात्रों में से एक था और पॉलीक्रॉप संत पौलुस का छात्र था, मतलब संत यूहन्ना का छात्र था और उसके बाद इरेनियस ने उसकी जगह ली और उसने उजाले को लाया और पिरगमुन के उजाले का दूत महान संत मार्टिन था। मैं नहीं सोचता कि संत मार्टिन की तुलना में वहाँ धरती पर कभी एक महान व्यक्ति रहा था यीशु मसीह को छोड़। सामर्थ हत्यारे उसका सिर काटने के लिए उसके पास आए। वह चिन्ह और चमत्कार और पेंटिकॉस्टल आशीषों पर विश्वास करता था और जब वे निकले तो वे उसकी हत्या करने जा रहे थे। उसने अपने अंग रखे को पीछे की ओर खींच लिया और अपनी गर्दन उनके पास रख दी और जब हत्यारे ने उसकी तलवार को उसके सिर को काटने के लिए निकाला, परमेश्वर की सामर्थ ने उससे दूर उसे सीधे पीठ के बल गिरा दिया और वह अपने घुटनों पर रेंगने लगा और उससे मांगने के लिए आमीन। वह कलीसिया के लिए एक दूत था। दूसरी चीजें देखो कैसे वह उसके एक भाई को लटका दिया गया था। वह उसे ढूंढने का यत्न करने के लिए मार्ग पर जा रहा था देखना कि किस बात ने जगह ली थी और जब वह वहाँ पर गया तब उन्होंने उसे लटका दिया था। वह सीधा पड़ा हुआ था मरा हुआ और उसकी आंखें उसके सिर से बाहर निकाल दी गई थी। वह उसके पास गया और अपने घुटनों पर गिर गया और एक घंटे तक अपने शरीर को उस पर पसार दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति पर आ गई और वह उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ को पकड़ा और ठीक वहीं पर उसके साथ वहां से निकल गया। यही इतिहास है जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन या और का जो कोई भी है, यह इतिहास है। जी हाँ श्रीमान, संत मार्टिन पिरगमुन कलीसिया के लिए दूत था जो कि कलीसिया विवाहित होती है जो उन्हें उसके बाद कैथोलिक मत के अंदर ले जाता है। थुआतीरा के कलीसिया का दूत कोलंबा था। सर्दिस के कलीसिया का दूत मरी हुई कलीसिया। सर्दिस शब्द का अर्थ है मरा हुआ होता है। एक नाम के साथ बाहर आया, ना ही उसका नाम, लेकिन एक नाम जिससे तुम जीते हो लेकिन तुम मर चुके हो। देखो कि उन्होंने किस तरह से उस दिन बपतिस्मे को लाया। देखो इसमें से आए हैं सर्दिस कलीसिया का दूत मार्टिन लूथर था, पहला सुधारक। फिलाडेल्फिया की कलीसिया का दूत जॉन वेस्ली था जो संदेश वाहक था। और लौदिकिया की कलीसिया का दूत अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, यह किसी दिन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वह धरती पर है। जिसके पास कान हो वो सुन ले। जानते हैं कि यह वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं। परमेश्वर उसके लिए न्याय को करेगा। अब ध्यान देना और हम अब वचनों को लेंगे, पीछे पहले कलीसिया के लिए जाएंगे। अब मैं चाहूँगा, मैंने यहाँ कुछ छोटी छोटी बातों को लिख कर रखा है जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सुने। पहले कलीसिया इफिसियंस कलीसिया, कलीसिया के कार्य, परमेश्वर ने उन्हें किस बात के लिए दोषी ठहराया। कार्य जो बिना प्रेम के थे, उनका इनाम जीवन का पेड़ था। स्मुर्ना कलीसिया एक सताई हुई कलीसिया थी, क्लेशों में से होते हुए गई। इनाम था जीवन का ताज। तीसरी कलीसिया पिरगमुन, झूठे सिद्धांत का युग, शैतान का झूठ बोलना और पोप के कार्यकाल के शासन की बुनियाद कलीसिया और राज्य से विवाह। इनाम था छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर। थुआतीरा की कलीसिया जो पोप के कार्यकाल की कलीसिया बहकाने वाली, वो अंधकार का युग था। इनाम था सामर्थ और राज्यों का राज्य करना और भोर का तारा। यही वह छोटा झुंड है जो उसमें से होकर गया। सर्दिस कलीसिया सुधारक का युग था। महान मिशनरी या मिशनरी नहीं, लेकिन छिपे हुए नाम, उनके पास अपने नाम थे और इनाम था सफेद वस्त्र और जीवन की किताब पर नाम जिसे न्याय में आना था। हमने इसे एक दिन लिया था, जीवन की किताब। आपका जीवन की किताब से न्याय किया जाएगा। वे संत परिवर्तित हुए और उसके बिना ले लिए गए, वे न्याय पर नहीं जाते हैं। फिलाडेल्फिया का युग भाईचारे के प्रेम का युग, बड़ी आज्ञा का युग और महान मिशनरी का युग, खुला द्वार और इनाम एक खंबा था। परमेश्वर के नामों का प्रकट होना इस युग के दौरान होना था। जब यह 1906 के आसपास चला गया तो ठीक है। लौदिकिया का युग गुनगुनी कलीसिया थी, धनी, चीजों में वृद्धि, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुच्छ, कंगाल, अंधी और अभागी और नंगी थी, और इनाम था प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठना जो उस युग में जय पाते हैं। अब आज रात को आगे बढ़ने के लिए, आज रात आपको सभा के बारे में थोड़ा दिखाने के लिए हम दूसरा अध्याय लेने जा रहे हैं, पहला कलीसिया युग। अब हम उसने प्रकट किया है और हम जानते हैं कि वह कौन है। वह परमेश्वर है। अब कलीसिया का युग आरंभ होता है, जैसा कि मैंने कहा, 53 के आसपास, 170 तक, और ए एफिसियस का शहर, जो एशिया के तीन बड़े शहरों में से एक था, अक्सर मसीह विश्वास का तीसरा शहर कहा जाता है। पहला यरूशलेम था, दूसरा एंटियोक और तीसरा एफिसियस था। सी बड़ा वाणिज्य और व्यापार का एक शहर, ई वहाँ की सरकार रोमन थी, एफ भाषा यूनानी थी। इतिहासकार मानते हैं कि यूहन्ना, मरियम, पतरस, आंद्रियास और फिलिपुस सभी को वहीं पर दफनाया गया था, और एफिसियस को इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता था। एफिसियस में मसीहत, जहां यहूदी रहते थे, एफिसियस में थे, और इसे लगभग एडी 53 या 55 में स्थापित किया गया था। मसीहत को वहां संत पौलुस के द्वारा बोया गया था। बाद में संत पौलुस ने एफिसियस में 3 वर्ष बिताए। पौलुस की शिक्षा ने एफिसियस के विश्वासियों को बहुत प्रभावित किया है। उसके बाद तिमोथियस एफिसियस में कलीसिया का पहला बिशप था। पौलुस ने एफिसियस की कलीसिया को लिखा। पौलुस के समय में यह एक महान कलीसिया थी। एफिसियस का अर्थ है, उसी एफिसियस नाम का अर्थ है, जाने दो, आराम करो, पीछे हटो। परमेश्वर के द्वारा ऐसा कहा गया, पीछे हटी हुई कलीसिया। परमेश्वर ने पहले उनके कार्यों को, उनके परिश्रम को और उनके धैर्य को स्वीकार किया। परमेश्वर ने उनके जीने के लिए, उनके पहले प्रेम को छोड़ने के लिए, पीछे हटने के लिए और उजाले के साथ अब और न बने रहने के लिए फटकार लगाई। एफिसियस एक भरमाई हुई कलीसिया नहीं थी, यह सिद्ध प्रेम को जारी न रखने के लिए स्वयं में विफल हो गई। एफिसियस का सारांश ऐसा है, फल बिना प्रेम के विश्वास त्याग के लिए प्रेरित किया गया, प्रतिज्ञाएं यह जय पाने वालों के लिए स्वर्ग, कलीसिया युग के एफिसियस के संतों के लिए जीवन के पेड़ को दिया गया था। यहाँ एक सुंदर चीज है, उत्पत्ति में जीवन के पेड़ के लिए 3 बार, प्रकाशित वाक्य में 3 बार उल्लेख किया गया है। पहली बार इसका उल्लेख किया गया था उत्पत्ति में, जो अदन में था और मसीह वो पेड़ था। प्रकाशित वाक्य में 3 बार इसका उल्लेख किया गया था, स्वर्ग में मसीह था। ओह, यही भरपूर है, प्रभु आशीष दे। अब हम एफिसियस का पहला अध्याय आरंभ कर रहे हैं, या दूसरे अध्याय का पहला पद, एफिसियंस कलीसिया। एफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लेख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 द्यूटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि योना उस समय पर वो संदेश वाहक था, इन सोने की 7 द्यूटों के बीच में चलते हुए यीशु मसीह था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो क्या कर रहा है? उसने ऐसा नहीं कहा कि वह एक दीवट के बीच में चल रहा था, वो उन सभी के बीच में चल रहा था। यह क्या दर्शाता है कि वो कल, आज और युगानुयुग के लिए वही परमेश्वर है, और हर कलीसिया युग में हर एक विश्वासी के लिए वह आता है पवित्र आत्मा के साथ, हर युग के लिए और हर व्यक्ति के लिए, वही कल, आज और युगानुयुग के लिए। उसके दाहिने हाथ में पकड़े हुए, दाहिने हाथ का अर्थ है उसका अधिकार और सामर्थ्य। उसके दाहिने हाथ में पकड़े हुए, अधीन, नियंत्रण में, और 7 कलीसिया काल के 7 दूत। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। इन कलीसिया युगों में से होते हुए उसे चलते हुए देखना, वो मसीही उसके लोगों के लिए इन अंधकार युगों में से होते हुए स्वयं को ज्ञात करवाता है। आगे हर एक युग में से होते हुए जबकि कलीसिया औपचारिक हो गई और बाहर खींच ली गई और कुछ एक तरफ चले गए और कुछ दूसरी तरफ, लेकिन कलीसिया के उस कुछ ही अल्पसंख्यक लोग अभी भी पकड़े हुए थे और मसीह ने उनके साथ काम किया उनके वचन की पुष्टि करते हुए, ठीक इसमें से होते हुए इसे फैलाता है। यह देखना बहुत सरल है कैसे यह हमने पाया है जो आज हमारे पास है। जब आप इसका अध्ययन करना आरंभ करेंगे, अब यहाँ शुरुआत में मैं सोचता हूँ कि आप सभी इसे इतना ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ एक कलीसिया का युग है, यह पेंटिकॉस्ट है, दूसरा कलीसिया काल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा कलीसिया काल। अब यदि आप इसे वास्तव में नजदीक से ध्यान देंगे, कलीसिया पेंटिकॉस्ट में आरंभ होती है। कितने लोग इसे विश्वास करते हैं? आप जानते हैं कि पेंटिकॉस्ट में क्या हुआ था। फिर हम कलीसिया को देखते हैं जैसे जैसे यह आगे जाती है, यह बस आरंभ होती है और थोड़ी और अधिक धुंधली होने लगती है और कुछ थोड़ा आगे और कुछ थोड़ा आगे, थोड़ा सा यह उस तरफ से आगे, जैसे जैसे वास्तविक सच्ची कलीसिया बाहर चली जाती है। अब मसीह, चाहे कलीसिया कितनी ही छोटी क्यों न हो, जहाँ कहीं भी दो या तीन मेरे नाम में एक साथ इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। जब वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, किस में? मेथोडिस्ट के नाम में, बैप्टिस्ट के नाम में, पेंटिकॉस्टल के नाम में, यीशु का नाम। जहाँ कहीं भी दो या तीन एक साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, और वे अंतिम दिनों तक बहुत कम संख्या में होने वाले हैं। उसने कहा उसे जल्दी से आकर और जल्दी से काम को करना है, या तो रैप्चर के लिए कोई देह न बचेगी जहाँ कहीं भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। अब पहला दौरा, वे प्रेरित। अब हम देखते हैं कि यह शुरुआत है, पेंटिकॉस्ट, वह वही पर चल रहा होता है, वही महान परमेश्वर, वही महान चिन्ह जो जगह लिए आगे इन युगों में से होते हुए, क्योंकि वह हर एक युग के बीच चला था। आशीष क्या उसके लोग जो उसके नाम में इकट्ठा हुए थे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, जैसे जैसे हम कलीसिया में से होकर जाते हैं, इस कलीसिया में यीशु का नाम था, इस कलीसिया में यीशु का नाम था, इस कलीसिया में यीशु का नाम था, और इस कलीसिया ने इसे खो दिया। ये कलीसिया बाहर आ गई, लूथरन का युग, एक नाम के साथ, एक नाम जिससे तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो, और ठीक आगे बढ़ता गया इस युग के अंत तक, और इस युग और इस युग के बीच एक खुला हुआ द्वार है जो उस नाम को फिर से कलीसिया में वापस लाता है। अब देखना और देखेंगे कि यह क्या यह सत्य है। यहाँ इसे वचनों में लेने के बाद वहाँ युगों के बीच, अब कल रात मैं कोशिश करूँगा कि इसे यहाँ पर लगाऊं जिससे कि हम सभी इसे देख सकें, और मैं हो सके तो कल दोपहर वापस आऊँगा और इसे चित्रांकन करूँगा। मेरे पास कुछ विचार हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और यदि आप में से किसी के पास भी इतिहास है तो उन्हें साथ लाएं, या आप लिख कर लें और नीचे पुस्तकालय में जाएं या कहीं पर भी, और इतिहास को निकालें और इसे पढ़ें और देखें कि क्या यह सही है। अब पहला पद, वह क्या कह रहा है? वह उन्हें अभिवादन दे रहा है। एफिसियस की कलीसिया के दूत को, यूहन्ना को यह लिख कि वह यह कहता है कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, यह एक अभिवादन है। अब दूसरा पद और तीसरा पद, वह उनकी प्रशंसा करता है। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखो कि इस पहले ही युग में यह विश्वास त्याग शुरू हो चुका था, ठीक वहाँ पहले से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि चुनी हुई और सच्ची कलीसिया जो बाइबल की आज्ञाओं को बनाए रखना चाहते थे और उन वचनों को बनाए रखना चाहते थे जिसे यीशु ने अपनी गवाही में बताया था, वे पहले से ही दूर होने लगे थे। कुछ तो घटित होना आरंभ हुआ, और वहाँ झूठे शिक्षक खड़े होने लगे थे जो लोग गलत शिक्षा दे रहे थे, वचन के विपरीत वे कुछ लाने या कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यही वो कारण है कि उसने कलीसिया के लिए इस प्रकाशन को दिया और कहा, जो कोई भी निकालता है या जोड़ता है, तुम्हारा भाग जीवन की किताब से बाहर निकाल दिया जाएगा, यही नष्ट होना है भाई। तब परमेश्वर के वचन के साथ दखलंदाजी मत करो, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह किस पर चोट करता है या ये क्या चोट करता है, बस कुछ भी हो इसे कहें जिस तरह से यह वहाँ लिखा हुआ है, यही वो तरीका है। हमें किसी और बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी याजक या किसी और की आवश्यकता नहीं है कि इसे हमारे लिए अनुवाद को करे। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा अनुवादक है, वह अनुवाद को देता है। अब यदि आप ध्यान दें, बुराइयों से मुड़ते हुए और झूठे भविष्यवक्ताओं को ढूंढना, उनके झूठे साबित होने के बाद जो भक्ति का भेष धरते हैं, क्या देखते हैं कि उस दौरान कलीसिया किस तरह से औपचारिक होना आरंभ हुई है? वे एक प्रकार से लोगों को ध्वस्त करना आरंभ कर देते हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नीचे हैं। वे इस कारण से लोगों का एक प्रकार से मजाक उड़ाना आरंभ करते हैं। तो ठीक है, क्या यीशु ने यह नहीं कहा, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें धार्मिकता के कारण सताते हैं? उसने कभी नहीं कहा कि औपचारिक होना आरंभ करो। उसने कहा आनंद मनाओ और खूब प्रसन्न हो, क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी सताया जो तुमसे पहले थे। उसने यह कहा कि पहाड़ी उपदेश मती 5 में, धन्य हो तुम इसलिए उन लोगों का होना जो आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। बस उन लोगों का होना है कि ऐसा कहें, यह एक आशीष है। वे केवल जब वे आपको श्राप देते हैं, वे आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषों को ला रहे हैं। यह उन पर वापस जाता है जैसा उस समय बालम पर किया गया था, यह उन पर वापस चला जाता है जब वे आपका मसीह होने का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह उन पर वापस चला जाता है और परमेश्वर एक आशीष को देता है, क्योंकि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताते हैं, उसके नाम के कारण तुम धन्य हो। अब हम देखते हैं कि वे शुरू करना चाहते थे और भक्ति का भेष धरना चाहते थे। अब मैं ठीक यहाँ रुक कर और कुछ बोल सकता हूँ, सोचता हूँ मैं करूँ। क्या आपने ध्यान दिया कि हर एक बेदारी, अब सेवक भाइयों आप इसे जांचें, हर एक बेदारी जुड़वा को उत्पन्न करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे याकूब और रिबिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एसाव और याकूब, मेरा मतलब है इजाक, याकूब के बजाय इजाक और रिबिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पिता पवित्र था, माँ पवित्र थी, लेकिन उन्हें दो लड़के जन्मे थे, एसाव और याकूब। अब वे दोनों धार्मिक थे, लेकिन एसाव, जब ये काम और कर्मों की बात आती है, एक अच्छे नियम को मानने वाले के रूप में वह हो सकता है एक बेहतर लड़का था जो याकूब की तुलना में पूरी तरह से बेहतर था। क्या आप यह जानते हैं, याकूब बस एक छोटा सा लड़का था जो हर समय अपनी माँ के आसपास लटका रहता था, लेकिन एसाव बाहर जाकर और काम करता, बाहर जाकर और हिरण का मांस लाता कि अपने बूढ़े अंधे पिता को दे जो एक भविष्यवक्ता था। उसने उसकी देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन याकूब के दिमाग में केवल एक ही बात थी, वह जन्मसिद्ध अधिकार को चाहता था। उसने परवाह नहीं की कि उसे कितनी देर तक बेकार में घूमना था या उसे जो भी करना था। उसके जीवन में की मुख्य बात वो जन्मसिद्ध अधिकार थी और एसाव ने इसका तिरस्कार किया। अब क्या आप स्वाभाविक मनुष्य को नहीं देख रहे हैं? जब एक बेदारी आती है तो वहाँ एक बेदारी से दो वर्ग के लोग बाहर आते हैं। वहाँ एक स्वाभाविक मनुष्य है जो आगे जाता है और वह वेदी के पास आएगा और कहेगा, हाँ श्रीमान, मैं मसीह को अपने उद्धारकर्ता के नाई स्वीकार करता हूँ। वह बाहर जाएगा और वह क्या करता है? पहली बात जो आप जानते हैं, वह किसी पूरे ठंडे औपचारिक कलीसिया में जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह सोचता है, ठीक है, यदि मैं कलीसिया में जुड़ता हूँ तो मैं बस उस अगले व्यक्ति के जितना ही अच्छा हूँ। क्या मैं बस फलाना फलाना व्यक्ति के जितना अच्छा नहीं हूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक मैं कलीसिया से संबंध रखूँ और अपने अंगीकार को करूँ? क्यों? इससे बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें फिर से जन्म लेना है, तुम्हें जन्म सिद्ध अधिकार को लेना है। और याकूब ने परवाह नहीं की कि उस पर कितना हंसा गया था, वह उस जन्म सिद्ध अधिकार को चाहता था और उसने परवाह नहीं की कि उसे किस तरह से प्राप्त करना था। अब बहुत से लोग जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे बस कुछ बदनामी होगी। वे नीचे वेदी पर नहीं आना चाहते हैं और जाकर थोड़ा रोएं या कुछ भोजन किए हुए बिना जाएं और कुछ, और वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी आप जानते हैं, श्रृंगार किए हुए होती हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे रोएंगे तो उनका श्रृंगार धुल सकता है, उसे फिर लगाना पड़ेगा। क्यों? वे, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वे पवित्र को दूषित करना है, मुझे आशा है कि यह उस तरह से नहीं लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। वे बस ऐसा नहीं चाहते हैं। वे नया जन्म नहीं चाहते हैं, क्योंकि नया जन्म एक तरह से गंदगी होती है, यह किसी अन्य जन्म की तरह ही होता है। कोई भी जन्म गंदगी होती है, मुझे परवाह नहीं है कि यह कहाँ पर भी हो। यदि यह एक सुअर के बाड़े में या खलियान में हो, या यदि यह गुलाबी जगह हो, सजे हुए अस्पताल के कमरे में हो, यह तो गंदगी होती है। और वैसे ही नया जन्म एक गंदगी होती है। आमीन। यह आपको उन चीजों को करने को लगाएगा जो आपने नहीं सोचा था कि आप करेंगे। एक कोने पर खड़े होकर और एक झांझ को बजाना या गाना परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्यों आप एक सनकी की तरह व्यवहार करेंगे। यही है जो प्रेरितों ने किया, यही है जो कुंवारी मरियम ने किया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह नशे में थी, वह समाज में गंदी थी, लेकिन जीवन से बाहर आने के लिए यह एक गंदगी को लेता है। आमीन। जब तक कुछ भी नहीं मरता और सड़ता नहीं है, तब तक जीवन इसमें से नहीं आ सकता है। जब तक एक मनुष्य अपने विचारों के लिए मरता और सड़ता नहीं है, तब तक मसीह उसके हृदय में नहीं आ सकता। जब आप अपने लिए सोचने की कोशिश करते हैं, अब यदि मैं वेदी पर चलकर जाऊं और कहूं, हाँ प्रभु, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं आपको पा लूंगा, मैं अपने दशवांश को दूंगा, मैं ये करूंगा, आपको ठीक वहीं पर अपने विचारों के लिए मरना और सड़ना होता है। पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दो और बस वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ चाहता है उसे करने दो। इसके साथ एक तरह से गंदगी करेगा, यह बहुत भयानक सा दिखाई देता है, ना पवित्र दूषक वस्तु, लेकिन यह सत्य है। यही एकमात्र तरीका है जिसे मैं जानता हूँ कि कैसे उस चीज पर जोर डालकर बताऊँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इससे अधिक क्या एक गंदगी थी उस दिन यहूदियों के उस उत्तेजित झुंड के लिए, तब इन लोगों को लड़खड़ाते होठों के साथ बाहर आते हुए देखना। आप जानते हैं कि लड़खड़ाना क्या होता है, अन्य जुबान और नशे में लोगों की तरह व्यवहार करना। ठीक यही वे कर रहे थे, वे गंदे दिखाई दे रहे थे। और उसने कहा, क्या ये सारे लोग नई मदिरा पिए हुए हैं? लेकिन बाद में एक तरह के अपने आपे में आकर उसने कहा, यह आपको ज्ञात करवाने के लिए और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, ये नशे में नहीं है जैसे आप इसे समझते हैं। लेकिन वह पीछे वचनों पर चला गया। यह वही है जिसे नबी योएल के द्वारा बात को कहा गया था और ये अंतिम दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर यो कहता है, मैं सारे देहों पर अपनी आत्मा को ढेलूंगा। इसी तरीके से कलीसिया का पहले जन्म हुआ था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अनंत है, तब वह बदल नहीं सकता है। और यदि शुरुआत में एक कलीसिया के बारे में उसका विचार ऐसा था, तो अंत में इसी तरह की कलीसिया उसके पास होगी, वह बदल नहीं सकता है। तो आप कैसे एक हाथ मिलाकर या छिड़काव को करके या कुछ और चीज को करके इसके स्थान पर रखते हैं या इसके विकल्प को ले रहे हैं? यह ठीक वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। प्रेरितों में से हरेक वापस उसी पर चला गया। जब वे ये सब कर चुके, उसके बाद पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तो पतरस ने कहा, क्या हम पानी को रोक सकते हैं? यह देखकर कि इसने पवित्र आत्मा को पाया है जैसे कि हमने आरंभ में पाया था, और उसने उन्हें प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी, यह सही है। पौलुस वहाँ पर गया और पाया कि लोग चिल्ला रहे हैं। एक लंबा समय बिताने के बाद बपतिस्मों का झुंड परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और उसने कहा, प्रेरितों के काम 19 में उसने कहा, या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा भी है। कहा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? उन्होंने कहा, हमने उसी मनुष्य के द्वारा बपतिस्मा लिया जिसने यीशु को दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने कहा, जी हाँ, यह अब काम नहीं करेगा। देखा, पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने इसे मोहर कर दिया था, उसके पास चाबी थी, समझे? कहा, यह अब काम नहीं करेगा, तुम्हें फिर से बपतिस्मा लेना होगा। इसलिए उसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा दिया, अपने हाथों को उन पर रखा और उनके पास उसी तरह के परिणाम थे जो उनके पास आरंभ में थे। पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, वे अन्य भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी को करने लगे। अब यही कलीसिया युग में से होते हुए आया। अब यह ठीक यही शुरुआत में आरंभ हुआ। मैं तुम्हारे धैर्य को जानता हूँ, तुम बहुत ही लंबे समय से दुखों को उठा रहे हो, मैं जानता हूँ। अब याद रखें, मैं वो हूँ जो धूपदानों के बीच चलता हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे काम और तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारा प्रेम और इत्यादि को जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ जो सब तुमने किया है, और मैं जानता हूँ कि तुमने इन लोगों को परखा है जो खुद को भविष्यवक्ता प्रेरित कहते हैं और पाया कि वे झूठे हैं। ओह, यह बहुत ही साफ साफ है, क्या नहीं है? मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, वे हैं। उसने कहा कि वे झूठे थे, लेकिन बाइबल ने कहा, एक मनुष्य को परखो। यदि आपके बीच कोई ऐसा है जो आत्मिक या भविष्यवक्ता है या कहता है कि वह है, तो मैं जो प्रभु हूँ उसे अपने बारे में ज्ञात करवाऊंगा। मैं उससे दर्शनों और सपनों में बात करूंगा, और यदि वह जो कहता है वो पूरा होता है तो उसकी सुनना, उससे मत डरो। देखो, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन यदि यह पूरा नहीं होता है तो उसकी मत सुनना, उसके पास मेरा वचन नहीं है। देखो, यदि यह उसका वचन है तो पूरा होगा। अब उन्होंने पाया कि ये लोग बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे थे। देखो, वे कुछ तो और लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी सोच पर जोर डालना जारी रखें, जहाँ हम कुछ मिनटों में महत्वपूर्ण बातों पर आएंगे। अब तो उसने कहा, मैं देखता हूँ कि तुमने लंबे समय तक कष्ट सहा है और धीरज को धरा है, और उनके साथ तुमने उन्हें परखा और पाया कि वे प्रेरित नहीं है, वे नहीं है। अब जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, इससे पहले कि हम इस पर फिर से शुरू करें, हर एक बेदारी जुड़वा के एक जोड़े को उत्पन्न करती है। एक आत्मिक मनुष्य होता है, दूसरा एक धरती का एक स्वाभाविक मनुष्य होता है। मैं कलीसिया के साथ जुड़ गया हूँ, मैं हर किसी से अच्छा हूँ, और यही है जो इस बेदारी ने उत्पन्न किया है। यही है हर एक बेदारी, यही है जो लूथर ने उत्पन्न किया, यही है जो इरेनियस ने उत्पन्न किया, यही है जो संत मार्टिन ने उत्पन्न किया, यही है जो कोलम्बा ने उत्पन्न किया, यही है जो वेस्ली ने उत्पन्न किया, और यही है जो पेंटिकॉस ने उत्पन्न किया। बिल्कुल वैसे ही आपने देखा कि वे किस तरह वे बीच के लिए चले गए हैं, उनके कलीसियाओं का निर्माण किया और बाहर चले गए और बड़े अच्छे अच्छे स्थान और मेरे प्रभु खड़े होकर और प्रेरितों के धर्म मत को दोहराना। मैं होली रोमन कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ और संतों के प्रभु भोज में। कोई भी व्यक्ति जो संतों के भोज में विश्वास करता है वह एक आत्मिकवादी है। मरे हुए के साथ कुछ भी भोज करना वो शैतान का है। यह बिल्कुल सही बात है। हमारे पास परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बिछवाई करने वाला है, वह व्यक्ति यीशु मसीह है। ये सही बात है। यही है जो पतरस ने कहा, और आप प्रिय कैथोलिक लोग उसे कहते हैं पहला पोप, और पतरस वो पहला पोप है जो यीशु के साथ चला। और फिर उसने कहा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई अन्य बिचवाई करने वाला नहीं है, और यह तुम्हारे आज 10,000 दूसरे हैं। क्यों ये इतना बदल गया है? यदि कलीसिया कभी गलती करने वाली नहीं है और नहीं बदलती है तो, और आपके सारे जन समूह लैटिन में कहे गए हैं, तो यह नहीं बदलेगा। क्या हुआ? क्या तुमने कभी कहीं पर भी बाइबल में प्रेरितों का संप्रदाय पाया है? यदि प्रेरितों के पास कोई संप्रदाय था तो पश्चाताप करें, और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। मैंने कोई और संप्रदाय कभी नहीं सुनी कि उन्हें जानता हो या कभी कुछ और चर्चा भी करता हो। लेकिन जब यह होली रोमन कलीसियाओं और इन सभी अन्य चीजों की बात आती है, और गॉड द फादर ऑलमाइटी है जो आकाश और धरती का संभालता है, यह मूर्खता है। समझे, यह सही बात है। ऐसा बाइबल में नहीं है, वचन में ऐसी कोई चीज नहीं है। यह एक बना बनाई संप्रदाय है जिसे उन्होंने बनाया है, लेकिन यह सारी प्रार्थनाएं और सब कुछ एक बनी बनाई चीज है। हम आज देख सकते हैं कि हमारे प्रोटेस्टेंट जब हम यहाँ पर आते हैं तो तब उसमें से बाहर निकल गए, बस उसी तरह बिली ग्राम ने रविवार को कहा। लोग इतना अधिक गलती में होते हैं, इतना तक कि वे सोचते हैं कि वे सही हैं, जबकि वे गलत होते हैं। यह सही बात है, यह सच्चाई है। मुझे खुशी है कि मैं अवश्य ही मैं जानता हूँ कि बिली ग्राम ने वहाँ पर जॉर्ज जेफरीज के अंतर्गत पवित्र आत्मा को पाया था, लेकिन इसमें से कुछ दिनों में वह इससे बाहर आ जाएगा। परमेश्वर अभी ठीक वहाँ पर उसका उपयोग कर रहा है, क्योंकि वह उस राज्य को हिला सकता है जो शायद ही कोई भी और इसमें जा सकता है। लेकिन आप उनके प्रचार को देख सकते हैं कि उसके पीछे कुछ तो है। इसका कारण इसमें से कुछ हाथों को मिलाने वाले बैप्टिस्ट हैं। जी हाँ श्रीमान। अब मैं तेरे काम जानता हूँ और तेरा धीरज, और यह भी कि तू, अब देखने दो, मुझे मिल गया। मैं तेरे काम को और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उसने उन्हें झूठा पाया, उन्हें कैसे जाना जाता है? वे वचन के साथ हवाला नहीं दे रहे थे। अब यदि एक मनुष्य कहता है कि बाइबल ऐसा इब्रानियों 13:8 में कहती है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, मनुष्य ने कहा, आह अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए, तब वो मनुष्य झूठा है। यदि बाइबल ने कहा पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में तुम में से हर एक जन बपतिस्मा लो, और बाइबल का हर एक स्थान एक ही बात को कहता है, और हर एक जन जिसने कभी बाइबल के समय में बपतिस्मा लिया था तो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था, और उसने उन्हें बपतिस्मा देने, छिड़काव करने या ऐसा ही कुछ करने की आज्ञा दी है, तो वो मनुष्य झूठा है। वो एक गलत भविष्यवक्ता पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं भाई आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह समय है अपने दास्तानों को उतारो और सुसमाचार का प्रयोग करो, समझे? यही सच्चाई है। अब मुझे कुछ अलग दिखाओ, मुझे दिखाओ कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति को कभी भी यीशु के नाम के अलावा किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा दिया गया था। देखो कैथोलिक कलीसिया के बाहर, तो यदि आपका उस तरह से बपतिस्मा हुआ है तो आप मसीह कलीसिया में नहीं है, आप कैथोलिक कलीसिया में है क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है। उनकी पत्रिका खुद के रविवार के मेहमान प्रश्नोत्तर करने वालों ने प्रश्न पूछा, क्या कोई प्रोटेस्टेंट बचेगा? कहा उनमें से बहुत से, क्योंकि वे हमारे बपतिस्मा को लेते हैं और इस तरह बहुत सी चीजों को करते हैं। कहा वे बाइबल के विषय में दावा करते हैं और बाइबल ने कहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, और हमने इसे वहाँ से लिया है और इस पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को रख दिया है और उन्होंने इसे इस पर से हटा दिया है। निश्चय ही समझे, ना ही एक मसीह बपतिस्मा है, यह एक कैथोलिक बपतिस्मा है। क्या आपने मुझे एक रात कहते सुना था, क्या तुमने कभी मसीही बपतिस्मा लिया है? मसीह बपतिस्मा, मसीह यीशु मसीह, ना ही किसी शीर्षक में। अब तीसरा पद, अब तो ठीक है, दूसरा और तीसरा पद, अब तीसरा पद, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए परिश्रम करते करते थका नहीं। मेरे नाम के लिए, क्या आपने ध्यान दिया कि उनके पास धीरज था? किस बात के लिए परिश्रम? उसके नाम के लिए। उस कलीसिया में उस नाम को पकड़े हुए देखा। अब इसे देखना, जब हम सप्ताह के दौरान आगे इस पर जाएंगे तो ये कैसे मिटता जाता है और दूसरे नाम के अंदर चला जाता है, समझे? तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए परिश्रम करते करते थका नहीं। वो उन्होंने उसके नाम के लिए परिश्रम किया। यीशु मसीह के नाम को किसी भी कलीसिया के ऊपर रखना, किसी भी चीज से ऊपर रखना, इसे पहले रखे। जो कुछ भी बाइबल ने कहा, तुम जो भी वचन में या कामों में करते हो, ये सब यीशु मसीह के नाम में करे। क्या यह सही है? जो भी वचन में या कामों में करते हैं, यदि आप विवाह करते हैं तो एक व्यक्ति से विवाह करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, यदि वे पूरी तरह से उनके विवाह में अलग हुए हैं, तो उनसे बिल्कुल विवाह न करें, समझे? यदि आप स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में पति और पत्नी करके घोषित करता हूँ, तो उन्हें छोड़ दो, तो ठीक है। यदि आप उन्हें बपतिस्मा देना चाहते हैं, तो उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा दें। यदि आप कोई भी चीज करते हैं जो आप यीशु के नाम में नहीं कर सकते हैं, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। किसी ने कहा थोड़ी पी लो, आप यीशु के नाम में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। किसी ने कहा थोड़ा पत्तों को खेलेंगे, आप यीशु के नाम में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। अपने ताश के पत्ते की पार्टी में एक छोटा सा गंदा बेहुदा चुटकुला आप यीशु के नाम में नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, समझे? आप यीशु के नाम में छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। मैं आगे जा सकता था, लेकिन हम आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसके नाम में नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि उसने कहा तुम जो कुछ भी वचन और कामों में करते हो वह सब यीशु मसीह के नाम में करो, तो ठीक है। अब हम जाएंगे यहीं। उसने उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की। अब मैं चौथे अध्याय में अब शिकायत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, या मेरा मतलब चौथा पद। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओह, मेरे पास तुम्हारे विरोध कुछ है। तुमने धीरज को रखा है, तुमने मेरा नाम रखा है। क्या आज इस भवन के लिए तब एक अच्छी बात नहीं होगी? जी हाँ श्रीमान, तुम पूरी तरह ठीक रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सा धीरज था और एक लंबे समय से धीरज को धरा है, लेकिन बात यह है तुमने मेरे नाम को रखा है। मैं उन सब की सराहना करता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। यह सब ठीक है और मैंने देखा है कि तुमने उन्हें परखा है जो कहते हैं कि वे प्रेरित और इत्यादि हैं, और पाया कि वे झूठे हैं, वे वचन के साथ सामना नहीं करते हैं। मैं उस सब की सराहना करता हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझे तुम्हारे विरोध मिला, और वह यह है कि तुमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। तुमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया और जो तुम्हारे पास एक बार उन अच्छाई के लिए पुराने चाल चलन पवित्र आत्मा की स्वभाव के लिए था, और तुम एक प्रकार से पीछे हटना आरंभ कर रहे हो। यह औपचारिकता के अंदर अंदर आकर कहते हैं हमारे पिता जो मूर्खता है, समझे, ये सब यहाँ जो समाज है, और किसी को तो एक बड़े लंबे वस्त्र के साथ बाहर आना है, आप जानते होंगे, गाना गाने के लिए झुंड में, आप जानते होंगे, और उनके सारे बालों में प्रसाधन पहने हुए और हर एक चीज, और उनके चेहरों के ऊपर बहुत सारा श्रृंगार किए हुए, और वे ऐसे गाते हैं, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, यदि ये ओरल रॉबर्ट्स की सभा नहीं रही होती थी तो मैं यकीनन उस एक झुंड को बाहर बुलाता। मैं एक बिजनेसमैन की बड़ी सभा में था और इसे रखा गया था, और हमारे पास नहीं, उस रात मैं बोलने जा रहा था, वे इसे होटल में वहाँ पर रख नहीं सके, और वे मुझे ओरल रॉबर्ट्स की इमारत में लेकर गए। और जब मैं ओरल के अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था तो वहाँ पेंटिकॉस्टल बच्चों का झुंड था, ओह, युवा पुरुष और महिलाएं 16 17 साल 18 वर्ष के, वे सभी वहाँ खड़े हुए थे। उनमें से 30 या 40 जन किसी प्रकार के गीत को गाने जा रहे थे। एक छोटे से, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी के द्वारा किसी तरह का एक पूर्व संगीत है, जैसे बेकी जिसके बारे में बात करती है, चाइकोविस्की या उनमें से कुछ इसी तरह की चीजें, मैं नहीं जानता, उनमें से कुछ इसी तरह के गीत, शास्त्रीय गीत। और यहाँ वे थे, भाई लोग सभा में कुछ दान को लेने जा रहे थे, और इनमें से हरेक के साथ गए, और उनके पास एक छोटा सा टोप था, वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे अंधे थे, और तभी चुटकुले और आप पर करते जा रहे थे, जिसे आपने कभी सुना होगा, उन लड़कों और लड़कियों के बीच, और हर तरह की बात करना। और वे लड़कियां इतना पेंट लगाई हुई थी, लगभग ओरल की इमारत को पेंट कर सकती थी, और वहाँ वे ऐसे ही थे, और खुद को पेंटिकॉस्टल कहते हैं। उन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया। मुझे पक्का है कि डेविड डुप्लेसिस से सुना होगा, परमेश्वर का कोई पोता नहीं है। नहीं श्रीमान, हमारे पास मेथोडिस्ट पोते हैं, हमारे पास बैप्टिस्ट पोते हैं, हमारे पास पेंटिकॉस्टल पोते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई पोता नहीं है। आप पुत्र और पुत्रियां हैं, आप अपनी माँ या अपने पिता से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वे भले पुरुष और महिलाएं थी। आपको वही कीमत चुकानी होगी जो उन्होंने चुकाई थी, आपको वैसे ही जन्म लेना होगा जैसे उन्होंने लिया था। परमेश्वर का कोई पोता है ही नहीं, तुम पुत्र हो या पुत्री, या आप एक पोते नहीं हो, यह एक बात तो पक्की है। वहाँ एक सभा में गए, और वे वहाँ एक बढ़िया पेंटिकॉस्टल असेंबली कलीसिया में, लड़के तुम उन महिलाओं को तब तितर बितर होते देखना चाहिए, जब उन्होंने मुझे अंदर आते हुए देखा, वे उन छोटी पतलून के साथ थी, छोटे कटे हुए बाल और उन गंदे आधे कपड़े पहने हुए, लगभग जैसे कि एक विनर, आप जानते होंगे, पोशाक में नीचे की तरफ चमड़ी की तरह चिपकी हुई पेंटिकॉस्टल महिलाएं, बहुत ही कामुकता के कपड़े पहने हुए। आपको न्याय के दिन पर इसके लिए जवाब देना होगा, आपको व्यभिचार करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यीशु ने कहा, जो कोई भी किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वह उसके हृदय में पहले से ही व्यभिचार कर बैठा। और यदि आप खुद को उस तरह से पुरुष के सामने पेश करती हैं, तो कौन दोषी है, आप या वो पुरुष? सही बने उस गंदे दिखावट को करना छोड़ दे, समझे, तो वहाँ पर आप हैं। तुम क्या करते हो, तुमने पहले प्रेम को खो दिया है। ओह, आप उन्हें एक कोने में एक झांक के साथ अपने हाथों से ताली बजाने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। ओह नहीं, वे अपने ऊपर किस तरह के वस्त्रों को चारों ओर ओढ़े हुए कुछ तो शास्त्रीय गीत को गाते हैं। देखो, उन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। पहली कलीसिया के साथ यही मामला है, देखा, वे बस संसार की तरह व्यवहार को करते हैं। उन्हें संसार की तरह कपड़े पहनना है, संसार की तरह दिखना है, संसार की तरह व्यवहार करना है, और उनके पसंदीदा टेलीविजन के सितारे हैं, आप जानते होंगे, वे बस इसे देखने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। हम सुशी से प्रेम करते हैं या जो कुछ भी और है, आप जानते हैं, उन्हें बस इसे देखना ही है। वे प्रार्थना की सभा और बाकी सब चीजों को छोड़कर इसे देखने के लिए घर पर ही रहेंगे। यदि वे नहीं देखते हैं, वे अपने पास्टर को जोर से आवाज लगाते हैं, वो कार्यक्रम शुरू होने तक समय में उन्हें बाहर जाने दें, जिससे कि वे घर जाकर इसे देख सके। परमेश्वर के प्रेम से अधिक संसार के लिए प्रेम, ओह, बहुत ही औपचारिक, वे नहीं कह सकते हैं आमीन अब और नहीं, ओह मेरे परमेश्वर, इससे उनका कुछ श्रृंगार मिट जाएगा, समझे, अब वे इसे और नहीं कहते हैं, यह पेंटिकॉस्ट है, यह बैप्टिस्ट नहीं है। उन्होंने कभी भी इसके साथ आरंभ नहीं किया था जो प्रेस्बिटेरियन थे। मैं पेंटिकॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यह सही बात है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही ज्यादा दुखद है भाई, लेकिन हम इस चीज से एक जन्म को चाहते हैं, एक मृत्यु को होना है, इससे पहले जन्म को ले सके, समझे, देखा, ये सच्चाई है। लेकिन आप वहाँ पर हैं, अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया। मैं, यदि परमेश्वर इस कलीसिया के विरुद्ध था, वह उस एक के भी विरुद्ध हो गया है, क्योंकि तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे विरुद्ध कर लिया है। मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध कुछ तो है, यही मेरी शिकायत है। तुम्हारे पास एक बार एक महान समय था, लेकिन तुमने संसार को धीरे धीरे करके अंदर आने देना आरंभ कर दिया और तुम थोड़ा सा औपचारिक व्यवहार करने लगे। तुम अब भी मेरे नाम को पकड़े हुए हो और तुम अब भी उन्हीं काम को कर रहे हो जो सही है, और तुम्हारे पास बहुत सा धीरज और इत्यादि चीजें हैं, और तुम परिश्रम करते हो। तुम एक खच्चर की तरह हो, तुम सिर्फ परिश्रम और काम को करते हो। ओह प्रभु मेरे परमेश्वर, देखो तुमने अनुग्रह और विश्वास और सामर्थ को छोड़ दिया है इसे परिश्रम और कार्यों से अदल बदल करने के लिए। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ भाई ब्रैनम, मैं हर विधवा स्त्री की मदद कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन वह पहला प्रेम कहाँ है जो तुम्हारे पास एक बार हुआ करता था? वह आनंद कहाँ पर है जो तुम्हारे पास हमेशा हुआ करता था? जैसा कि दाऊद ने एक बार कहा था, हे प्रभु मुझे मेरे उद्धार के आनंद को लौटा दो। वे सारी रात प्रार्थना की सभाएं कहाँ पर हैं? और वो तुम्हारे गाल पर के आंसू, मेरे परमेश्वर भलाई, यहाँ तक कि बाइबल में धूल जम गई है और उस पर मकड़ी का जाला बन गया है। तुम उन गंदी पुरानी प्रेम कहानियों और समाचार और चीजों को पढ़ते हो, और जिन चीजों को प्रकाशित करने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए उन्हें बाहर एक कूड़ेदान के लिए रखा जाना चाहिए, और हम पेंटिकॉस्ट लोग उन्हें उठाते हैं और बस उन पर कूड़ेदान के डिब्बों पर मक्खियों के झुंड की तरह मचान लगाते हैं। यह सही बात है। ओह दया करें, हमें क्या आवश्यकता है, अपने पहले प्रेम पर वापस जाएं, वापस पेंटिकॉस्ट में जाएं। ओह अच्छा होगा कि वहाँ से दूर रहूं, तो ठीक है, लेकिन आप समझते होंगे उस पहले प्रेम को छोड़ दिया है। चौथा पद, पांचवा पद, अब एक चेतावनी, पांचवा पद एक चेतावनी, याद करो और पश्चाताप करो। देखा, तो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, तुम कहाँ से आए हो, तुम पेंटिकॉस्ट से गिरे हो, तो अब तुम जहाँ पर हो पीछे हट गए हो, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, वापस फिर से पेंटिकॉस्ट में जा, या तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके HIS समझे, ये उसके कौन है क्या आपने नहीं समझा, उसके स्थान से हटा दूंगा यदि तू मन न फिराएगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास एक परमेश्वर से भरा हुआ पास्टर है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और आप उसे अपनी उंगली से पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तो ठीक है, यदि वह हमारे बारे में कुछ कहता है, ऐसे पोशाक पहना हुआ झुंड हो, यदि हमारे बारे में कुछ भी कहता है कि श्रृंगार किए हुए हों, हम तब उसे कलीसिया से बहिष्कृत कर देंगे। आप चिंता न करें, परमेश्वर आपको मौका मिलने से पहले ही ऐसा कर देगा। वह बाहर जाकर सड़क पर पत्थरों को प्रचार करेगा, इससे पहले कि वह उस तरह की चीजों के साथ समझौता करे। आपके पास एक पास्टर है जो वास्तव में आपको सत्य बताता है, आपको परमेश्वर का आदर करना चाहिए और आत्मा में बने रहना चाहिए और परमेश्वर की आराधना करे, ये समझते हुए कि आप नष्ट हो जाएंगे यदि आप नहीं करते हैं, समझे। लेकिन लोग आज ऐसे जीते हैं जैसे वे जी रहे थे, यही केवल एक चीज जो वहाँ थी, यहाँ धरती पर जीना है, बात खत्म। आपको एहसास नहीं है कि आपके पास एक प्राण है जिसे यहाँ छोड़कर कहीं तो जाना है, और आप अपनी मंजिल को ठीक यहीं पर मोहर बंद करते हैं। जिस तरह से आप जीते हैं और जिस तरह से आप करते हैं, ईर्ष्या को पकड़े हुए और बुराई और हर एक चीज करते हैं, और फिर कलीसिया की ओर दौड़ते हैं, ओह दया करें, उफ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप मसीह पर एक निंदा को लाने का कारण है, क्या यह सही नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं करते? अवैध शराब बेचने वाले कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है? यह वैश्य नहीं है जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाती है, यह तो वे लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, यही कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि अवैध शराब बेचने वाले क्या है और वैश्य क्या है। जब हमारी बहनें वैश्य की तरह कपड़े पहनती हैं, तो यह अलग है, यही है जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है। जब व्यक्ति अवैध शराब बेचने वाले की तरह पीता है, तो यही है जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है। वे एक मसीह होने का दावा करते हैं, और वे ही लोग ऐसा करते हैं। लोग आपके लिए देख रहे हैं, जो नाम वो जो यहाँ तक उस नामों में यीशु मसीह का नाम लेता है, पाप से दूर रहे। देखा, इससे दूर रहे। ओ हम में बहुत ही कमी है भाइयों, मैं आप हम में सब हम में कमी है जो मसीह हमसे होने के लिए चाहता है, और ठीक यहाँ इस दिन में हर एक पाप को एक तरफ करने का समय आ गया है जो हमें आसानी से घेरे हुए होते हैं, और धीरज के साथ दौड़ को दौड़ें जो हमारे सामने रखी हुई है। प्रचारकों यह सही है, भाइयों यह बिल्कुल सही है। याद करो और पश्चाताप करो, या तो मैं उस तारे के उजाले को उसके स्थान पर से हटा दूंगा। उसका स्थान क्या है? कलीसिया में। लेकिन यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं और वापस नहीं जाते जहाँ आप पहले स्थान पर थे, तो मैं तुम्हारे पास्टर को तुमसे दूर ले जाऊंगा और उसे उसके स्थान से हटा दूंगा और उसे कहीं और रखूंगा, जहां उसका, जहां मैं अपने प्रकाश को प्रतिबिंबित करूंगा जो चमकेगा। क्या यह गंभीर बात नहीं थी? यह समय है कि कलीसियाएं पश्चाताप करें। यह पेंटिकॉस्ट के लिए समय है कि इन बहुत से छोटे चमकाए गए विद्वानों को पुलपिट से बाहर करें और वहां पर पुराने चलन के प्रचारकों को ले जो आपको सच्चाई को बताएंगे। न ही वे पीठ को थपथपाते फिरते हैं भोजन के बिल को भरने के लिए बड़े वेतन और ऐसा ही कुछ और मनोविज्ञान और कोई घोड़े की दौड़ और शोरबे का रात्रि भोज और इन सभी चीजों के लिए कलीसिया का उपयोग नहीं करते। यह सुसमाचार की ओर वापस जाने का समय है। मैं परवाह नहीं करता कि आप कितने थोड़े लोग हैं, जहां दो या तीन इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में रहूंगा। पश्चाताप करो जब तक कि मैं आकर धूपदान को नहीं हटाता, उसे दूर कर दूंगा कहीं और उसका प्रकाश चमके। अब छठा पद, अब यहाँ पर एक है जिससे हमें परेशानी होगी। अब आप पश्चाताप के अलावा वह आकर और पास्टर को दूर कर देगा, पर हाँ तुझ में अब याद रखना, ओह अब इससे मत चूकना। यह बाकी की सभी बातों को एक साथ बांधने जा रहा है। नीचे हम सीधे इस पर आगे आ रहे हैं, वो युग जिसमें हम अभी हैं। हर कोई अच्छा महसूस कर रहा है पहले? क्या आप जल्दी में हैं? तो ठीक है, अब तो ठीक है, बस तब थोड़ा सा धीरज करें। अब धन्यवाद, पर हाँ तुझ में यह बात तो है। तब उनके पास बात थी, क्या उनके पास बात नहीं थी? अब उनके पास क्या था कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। तू निकलियों के कामों से घृणा करता है। आज मैं वहाँ अध्ययन में बैठा हुआ था, मैंने उस पर यहाँ कुछ लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप अब बहुत ही ध्यान से सुने, ये यहाँ कुछ पन्नों में है। छठा पद प्रशंसा है और सहमति है। यही परमेश्वर और कलीसिया एक ही बात पर सहमत होते हैं कि वे निकलियों के कामों से घृणा करते थे। सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता, सच्ची कलीसिया जो इस एफिसियो कलीसिया में थी। अब याद रखें, हर एक कलीसिया की उसकी औपचारिकता है और हर एक कलीसिया की उसकी आत्मिकता है। यही वो जुड़वा है जो हर एक बेदारी में जन्मे हैं और हर एक कलीसिया में रहते हैं। वे ठीक इस युग में आरंभ हुआ और इस युग में समाप्त होता है, और अतः औपचारिकता ने इसे तुआतीरा युग में ले लिया और लूथर ने इसे फिर से वापस खींच लिया और अब यह फिर से सीधे वापस परिवर्तित हो रहा है। क्या आप उस औपचारिक धर्म को देख सकते हैं? उसमें और कैथोलिक वाद के बीच कोई अंतर नहीं है, यह सब एक ही बात है। हर एक संगठन ने ठीक इसके अंदर बिगाड़ को किया है। परमेश्वर ने कभी भी अपनी कलीसिया को संगठित नहीं किया। ठीक यही है जो वे यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे। और आप ध्यान दें और देखें कि क्या यह सही नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए कि संगठन किस तरह से श्रापित है। यह नई कलीसिया के लिए भिन्न था, नए करार की कलीसिया, समझे? पर हाँ तुझमें यह बात तो है, तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। सच्ची दाखलता ने निकलियों के औपचारिक कामों से घृणा की, इसी तरह परमेश्वर को घृणा थी। इफिसियों कलीसिया में जो कार्य थे इफिसियों कलीसिया में, वो पिर्गमोन कलीसिया में एक सिद्धांत बन गया। इफिसियंस में वो पहली कलीसिया, यह एक काम था। अगले कलीसिया में यह एक सिद्धांत बन जाता है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? क्या आप इसे अब समझ सकते हैं? यह इफिसियंस में एक काम है और देखना, यहाँ पर पिर्गमोन में यह एक सिद्धांत बन गया। यह केवल एक छोटे से बालक के रूप में यहाँ आरंभ हुआ। अब एक मिनट में यह देखने जा रहे हैं कि यह क्या था। यहाँ पौलुस के बताए हुए भेड़िए हैं निकलियों के कार्य। अब क्या, आइए उस शब्द को अलग करते हैं और पता लगाते हैं कि हमें क्या मिला है। इससे पहले हम आगे जाएं, निकलियों शब्द मेरे लिए एक भिन्न चीज है। मेरे पास हर एक यूनानी शब्द कोश है जिसमें मैं देख सकता था। निकलियों शब्द निकू NICKO निको से आया है। रुकना, मैं सोचता हूँ कि मैंने इसे यहाँ लिखा है। NICKO निकू, जिसका अर्थ है जय पाना या उखाड़ फेंकना। निकुलियों, उखाड़ फेंकना या जनसाधारण पर जय पाना। वे यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वे उस कलीसिया को लेने की कोशिश कर रहे थे जहाँ परमेश्वर के पास्टर थे और परमेश्वर की आत्मा जीवित परमेश्वर के कलीसिया में दानों के द्वारा चल रही थी, और उनके पास एक सिद्धांत था जिसे वे आरंभ कर रहे थे, जो उनके पास कुछ याजक थे और बिशप और पोप और इत्यादि थे, जिसे परमेश्वर ने कहा इसने घृणा की, वह आज भी इससे घृणा करता है। निकुलइयो, निकु जय पाना या जन साधारण को उखाड़ फेंकना। जन साधारण कलीसिया है। कितने लोग जानते हैं कि जन साधारण कलीसिया है? तो ठीक है, उखाड़ फेंकना या जय पाना या जन साधारण का स्थान लेना, दूसरे शब्दों में सारी पवित्रता को ले लेना, कलीसिया से सारी सामर्थ को ले लेना और इसे याजकों के हवाले कर देते हैं। सभा के लोग किसी तरह से भी जिए, जिस तरह से भी जीना चाहते हैं, लेकिन याजक वो एक पवित्र जन है। पवित्र आत्मा के चिन्हों और अद्भुत कामों को लोगों से दूर ले जाते हुए जो उनके यहाँ होते हैं, और उन्हें दूर ले जाना और उनके लिए एक पवित्र याजक गण को देते हैं। पवित्र आत्मा को निकालकर उसके बदले में एक याजक गण को रखते हैं। आपने देखा यह क्या था? यह अतः बन गया। यहाँ इस कलीसिया में यह एक काम थे और यह स्थान एक सिद्धांत बन गया और थुआतीरा ने इसे अपने लिए ले लिया। और जब लूथर बाहर आया तो वह उस तरह से नहीं रह सका, वह सीधा पीछे चला गया और इसे फिर वापस ले लिया। बिशप, कार्डिनल, आर्क बिशप, कौन संसार में परमेश्वर की कलीसिया का प्रमुख होता है सिवाय खुद उसके? आमीन। अब मैं धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। कलीसिया पर शासन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया था, न ही तब प्रचारक को। सारी सभा के लोग, केवल प्रचारक पवित्र हो, यही सारी कलीसिया के पास पवित्र आत्मा है। और बजाय इसके, बजाय आत्मा के होने के, इसे करने के लिए उन्होंने पतली रोटी और एक पतला छोटा सा बिस्किट लिया और कुछ मदिरा को लिया और इसे पवित्र यूरिस्ट कहा, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा। कैसे संसार में एक पतला छोटा सा बिस्किट और कुछ मदिरा एक आत्मा हो सकता है? अब यदि यह इस तरह से है तो आपको प्रेरितों के काम 2 को इस तरह से पढ़ना होगा। जब पेंटिकॉस का दिन पूरी तरह से आया तो यहाँ रास्ते पर एक रोम का याजक आया और उसने कहा, अपनी जीभ को बाहर निकाल कर चाटो, और उसने पतला छोटा सा बिस्किट उस पर रखा और उसने मदिरा को पिया, कहा, अब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। अब हम सोचते हैं कि यह भयानक है, यह है। अब आगे जाएंगे, मुझे बैप्टिस्ट कलीसिया में नियुक्त किया गया। आइए हम बैप्टिस्ट को लें। मेथोडिस्ट, हम क्या करते हैं? यदि तुम यह स्वीकार करोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो तुम बच गए हो। शैतान विश्वास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और इस पर थरथराता है। शायद वो बहुत से कलीसिया के सदस्यों की तुलना में इसे अधिक विश्वास करता है। शैतान उसी बात पर विश्वास करता है और थरथराता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपराधी है। अब हम इसे मेथोडिस्ट रूप में लें। वे कहते हैं कि योना ने बपतिस्मा नहीं किया कि उसने छिड़काव को किया, कहा वहाँ देश में बहुत सारे छोटे खुदाई किए हुए खड्डे थे और उस स्थानों से पानी ऊपर आता था और उसके पास एक मुसेल सिप्पी थी और जिसके साथ उसने एक खोदकर खड्डा किया था। और वे असल में ऐसा प्रचार करते हैं, और इस खड्डे सिप्पी मतलब वो इस मुसेल सिप्पी में कुछ पानी को लेता, छोटे खुदाई किए हुए खड्डे से निकालकर और लोगों पर छिड़काव करता। बेकार की बात है। ओ भाई, तो ठीक है, यहाँ हम इसे ले लेंगे। जब पेंटिकॉस का दिन पूरी तरह से आया, वे सारे एक स्थान पर एक चित्त में थे और पास्टर ने नीचे आकर एक अच्छे उपदेश को प्रचार किया और कहा, मुझसे संगति के लिए दाहिना हाथ बढ़ाओ और हम तुम्हारा नाम किताब पर डाल देंगे। यह सही नहीं दिखाई देता है। क्या देता है? आपको ये मिल सकता है, आप इसे एक जन्मतिथि पत्र में नहीं पा सकते। वे इससे बेहतर जानते थे। पुराने समय का महिला जन्मतिथि पत्र उसकी तुलना में अधिक सही होगा। तो ठीक है, तब क्या कारण था? निकुलइयो ने वचनों का बदलाव करने के लिए पुरुषों के एक झुंड को अंदर लाते हैं और एक संप्रदाय को बनाते हैं जिसमें परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता था। वे वहीं पर मर जाते हैं। तब उसने कहा, तुम मर चुके हो, तुम्हारे पास एक नाम है जिससे तुम जी रहे हो, लेकिन तुम मर चुके हो, उसमें से बहुत से मरे हुए हैं और इसे नहीं जानते। मैं और मेरा भाई मछली पकड़ रहे थे। हम यहाँ पर छोटे से लड़के ही थे और मैंने एक पुराने तड़क कछुए को पकड़ा और मैंने उसका सिर काट दिया और उसे एक प्रकार से अलग कर दिया। उस चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था और उसे वहाँ तट में फेंक दिया। और मेरा छोटा भाई साथ आया था और उसने कहा, तुमने थोड़ी देर पहले क्या पकड़ा? मैंने कहा, एक कछुआ। उसने कहा, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कहा, वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ, और उसका सिर वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर चला गया। और उसने कहा, क्या वह मर चुका है? मैंने कहा, यकीनन उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया, वह अवश्य ही मर चुका होगा। तो उसने छड़ी को उठाया और इस कछुए के सिर को नदी में फेंकने के लिए आगे की ओर करना आरंभ किया, और जब या नाले में, और जब उसने ऐसा किया तो पुराने कछुए ने छड़ी को पकड़ लिया। आप जानते हैं वे एक या दो घंटे के लिए छटपटाएगा, वो वापस कूद गया। उसने कहा, हे मैंने सोचा कि तुमने कहा यह मर चुका था। मैंने कहा वह मरा हुआ है। उसने कहा तो वह इसे नहीं जानता। नहीं, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं मरे हुए हैं और यह नहीं जानते। निकुलियों, ओह प्रभु, ओह। उसने कहा तुम उससे घृणा करते हो। पूरी तरह सारे पवित्र याजकों को लेते हुए, पवित्र कार्डिनल, पवित्र बिशप, और आप में से कुछ पेंटिकॉस्टल्स, वो बड़े प्रधान, उसे नीचे आने दो। मुख्य प्रधान, वो आपको बताएगा कि तुम्हारी यहाँ चंगाई की सभा हो सकती है या नहीं। आहा, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही वह एक है जो ये बताता है कि होना है या नहीं। परमेश्वर का अनंत वचन। ठीक है भाई ब्रैनम, हम विश्वास करते हैं कि बाइबल यीशु के नाम में बपतिस्मा को सिखाती है, लेकिन मुख्य प्रधान ने कहा है कि यदि हमने अपने कलीसिया में इसे आरंभ किया तो वह हम सबको बाहर निकाल देगा। आगे बढ़ो, ये सही बात है। मुझे या तो बल्कि यहाँ से बाहर निकाला जाएगा या तो वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। इसलिए यदि आप यहाँ से कुछ भी निकालते हैं तो आप वहाँ से किसी भी तरह से बाहर जा सकते हैं। इसलिए हो सके तो अच्छा होगा आप यहाँ से बाहर निकाले जाएं। यदि वह तुम्हें यहाँ से बाहर करता है तो तुम्हें वहाँ अंदर कर दिया जाएगा। तो यह बस एक ही बात है, इसलिए इसके साथ सही बने रहें। हम सही बने रहना चाहते हैं। ओ प्रभु, यह एक गंभीर बात है भाई, हमें इस चीज को ठीक करना होगा। हमारे पास कभी भी कलीसिया नहीं हो सकती है जब तक कि परमेश्वर को इसे बनाने के लिए एक बुनियाद नहीं मिलती। वह कभी भी कुछ बेहुदा बातों पर अपनी कलीसिया को नहीं बनाएगा। उसे उसके वचन पर आना होगा, नहीं तो वह बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक उसके वचन पर। ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई तो वहाँ पर था। उसने कहा, भाई ब्रैनम छोटा ओका के लिए आओ। छोटा ओका में कितने लोग थे? क्यों, बस यहाँ देखें, कलीसिया से एक तिहाई लोग या उससे अधिक छोटा ओका में थे। जो अब उस दोपहर को वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और आप सबने उसे सुना, यह जानते हुए कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। परमेश्वर कमरे में प्रकट कर सकता है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं, और आप जानते हैं उसने ऐसा किया। वहाँ आकर कहा, अब भाई ब्रैनम, ओह वह प्रभु का सेवक है। जब आत्मा उस पर है तो वह अभिषेक भविष्यवक्ता है। वह निश्चित ही जानता है, परमेश्वर उसे बताता है कि क्या है और क्या होने जा रहा है, लेकिन उनको धर्मज्ञानी लोग इसकी नहीं सुनते। क्या ही बिना हिचकिचाहट के विचार हैं। एक मनुष्य यह कैसे कह सकता है, क्यों मैंने नहीं? यदि आप कॉफी से फूटी हुई फलियों को नहीं जानते तो आप इससे बेहतर जानते होंगे। आप भला कभी भी ऐसी बात को कैसे सोच सकते हैं? क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसी शब्द भविष्यवक्ता स्वयं का अर्थ होता है, एक वचन का दिव्य प्रकाशन देने वाला। आप कैसे कर सकते हैं? प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के लिए आता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वो एक था, उन्होंने इसे कहा, लेकिन आप वहाँ पर थे, समझे? कैसे एक मनुष्य कहीं पर तो छोटी सी कलीसिया के सिद्धांत को रखेगा, क्योंकि उनका संगठन इससे सहमत नहीं होगा। शोरबे के रस्से के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेचना, ऐसा हो तू जो अभागा पाखंडी है, ये सही है। अपने जन्म अधिकार को बेचना शोरबे के रस्से के लिए, संप्रदाय की गंदगी के लिए, संगठन की गंदगी जिससे परमेश्वर घृणा करता है। इतना याद रखें, आप कहते हैं संगठन, परमेश्वर इसे घृणा करता है। यह वह चीज है जो भाइयों को अलग करती है और टूट गई है। आज रात एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेस्बिटेरियन, बहुत से लोग परमेश्वर की मेज के इर्द गिर्द संगति को रखना चाहते हैं, लेकिन यदि वे ऐसा करते तो वे पहली बार ही इसमें शामिल होने से पहले ही बाहर निकाल दिए जाते। ये बिल्कुल सही है। माँ इससे जुड़ी हुई थी और वे आरंभ से ही बस एक पोते हैं। ओ प्रभु, मैं परवाह नहीं करता कि माँ किससे जुड़ी हुई थी। माँ उसके दिन में सारे उजाले में चल रही थी। आप एक दूसरे दिन में रह रहे हैं। विज्ञान ने एक बार साबित किया, लगभग 300 वर्ष पहले, एक पृथ्वी के चारों ओर एक गेंद को चक्कर लगाने के द्वारा, यदि कोई भी वाहन कभी भी 30 मील प्रति घंटे की तेज गति से आगे बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण इसे पृथ्वी से उठा लेगा और इसे अंतरिक्ष के अंदर लेकर जाएगा। आपको लगता है कि विज्ञान आज भी यही विश्वास करता है? वे 1900 मील प्रति घंटे चल रहे हैं। वे अब पिछली बात को नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि वे पीछे देखते रहें। देखो वे जो आगे की ओर देख सकते हैं, लेकिन कलीसिया हमेशा पीछे देखना चाहती है। देखो कि वेस्ली ने क्या कहा, मूडी ने क्या कहा, सेके ने क्या कहा। सारी चीजें उनके लिए संभव है जो विश्वास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। बाइबल में केवल एक ही चीज पीछे की ओर देखते हुए पाई गई। क्या आप जानते हैं कि कौन सा जानवर हमेशा पीछे देखता है? वो वहाँ सबसे निचले जीवन का है। कितने लोगों को पता है कि उस चाल में सबसे निचला जीवन किसका है? एक मेंढक का वहाँ सबसे निचला जीवन है और एक मनुष्य का वहाँ उच्चतम जीवन होता है। और एक मेंढक पीछे की ओर देखता है, मुझे वह पुराना निचला जीवन पसंद नहीं है, मैं आगे की ओर देखना चाहता हूँ। विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, उजाले में चलते हुए, जैसे वो उजाले में है, आमीन, जैसे वह उजाले को चमकाता है। एक बार केंटकी में मैं एक सभा को कर रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा, ओह मुझे उस चंगाई पर विश्वास नहीं है। और मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप अमेरिकी हो। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता हूँ जब तक कि मैं इसे देख नहीं लेता। और मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा, अब मुझे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता आप जो कह रहे हैं। मैंने कहा, यह आपका अपना अमेरिकी विशेष अधिकार है, आपके पास नहीं होना है। उसने कहा, अब मैं कभी कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं इसे स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं यह अच्छा है, आप अवश्य ही मिसौरी से होंगे। कहा, नहीं, मैं एक केंटकियन हूँ, ये केंटकी के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। मैंने कहा, लेकिन कुछ भी हो, मैंने कहा, यदि आपका यही वो तरीका है जो आप सोचते हैं, तो आप आगे बढ़ें। और उसने कहा, मैंने कहा, आप घर कैसे जाते हैं? उसने कहा, मैं पहाड़ी के उस ओर जाता हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। खैर, मेरे साथ वहाँ पर आ जाए, वो भला मनुष्य है। कहा, मेरे साथ घर चलो, सारी रात रहो भाई ब्रैनम। मैंने कहा, काश मैं ऐसा कर पाता भाई, लेकिन मैंने कहा, मैं अपने अंकल के साथ यहाँ जा रहा हूँ। और उसने कहा, मैंने कहा, आप वहाँ गाड़ी चलाकर वहाँ जाना चाहोगे? कहा, नहीं, मुझे इस तरह से वहाँ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होगा, और नीचे एक खाई है, और ऊपर की ओर आप जानते होंगे कि यह कैसे नीचे होता है। और मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, तुम वहाँ कैसे पहुँचते हो? उसने कहा, मैं वहाँ रास्ते पर से होकर जाता हूँ, इसलिए। मैंने कहा, आप तो अपने आगे अपना हाथ भी नहीं देख सकते हैं। मैंने कहा, आप वहाँ पर कैसे जाते हो? कहा, मेरे पास एक लालटेन है। और मैंने कहा, ठीक है, आप कैसे, आप क्या करते हो? उस लालटेन को जलाते हो और फिर उसके साथ चलते हो? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, जब आप उस लालटेन को जलाते हो तो क्या आप उसे इस तरह से ऊंचा रख सकते हो? मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। उसने कहा, आप नहीं देख सकते हैं। मैंने कहा, फिर आप वहाँ कैसे जाते हैं? ओह, उसने कहा, मैं सिर्फ लालटेन जला देता हूँ और मैं वैसे वैसे चलता हूँ जैसे जैसे उजियाला। मैंने कहा, बस यही है, आमीन, बस उजाले में चलना है, बस चलते रहें, बस ऐसे ही खड़े मत रहो, आपको कभी नहीं मिलेगा जहाँ जाना है। यदि आप बचाए गए हैं तो पवित्रीकरण के लिए आगे बढ़ें। आप कहते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? बस चलते रहें। क्या पवित्रीकरण के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? मुझे कैसे मिलेगा? बस उजाले में चलते रहें। क्या चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य? बस उजाले में चलते रहें, समझे? बस चलना जारी रखें। हर बार जब आप एक कदम आगे चलते हैं तो उजाला आपसे थोड़ा आगे निकलेगा, क्योंकि वह हमेशा आपके आगे रहता है। वो ढकेलता नहीं है, वह अगुवाई करता है, वह उजाला है। ओह, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, क्या आप नहीं हो? वह उजाला है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तू निकुलियन के कामों से घृणा करता है, एक शिक्षा बन गई है। अब देखते हैं कि पौलुस अब किसकी कलीसिया, अब इस कलीसिया की स्थापना किसने की? पौलुस ने, इफिसियस। आइए अब पीछे 20वें अध्याय की ओर वापस जाएं, बस एक मिनट, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में, और देखें कि पौलुस, क्या विश्वास करते हैं कि पौलुस भविष्यवक्ता था? निश्चय ही वह था, निश्चित रूप से वह था। उस रात को याद है, वो दर्शन उस तूफानी समुद्र पर और इत्यादि, अब और इसके बारे में सब। अब 20वां अध्याय संत जो प्रेरितों के काम, और आइए अब शुरू करते हैं लगभग 27वें पद में, और अब ध्यान से सुने जैसे हम पढ़ते हैं। अब यह पौलुस है, एक भविष्यवक्ता, यह पहले से बता रहा है कि क्या होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। वो धन्य मनुष्य, ओह, मैं उस दिन वहाँ पर खड़ा होना चाहता हूँ और उस शहीद का ताज उसके सिर पर रखना चाहता हूँ। यदि वहाँ ऐसी कोई चीज है जिसके लिए मैं रो सकता हूँ तो मैं रोऊंगा, मैं पौलुस को चिल्लाऊंगा, देखकर चिल्ला उठूंगा, देखो संत पौलुस, वह महान प्रेरित अपने वस्त्र के साथ उज्जवल और निष्पक्ष बनाया, और मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ चिल्लाना होगा जब हम तब वहाँ पहुँचेंगे, क्या आप नहीं? अब मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, क्या ये सही है? अब मसीह लोगों, इस तरफ देखो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन था जिसने लोगों को आज्ञा दी, जिसने यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और तरीके से बपतिस्मा दिया गया था और उन्हें आकर फिर से बपतिस्मा दे सका? उसने पूरे उपदेश को दिया, क्या ये सही है? तो ठीक है, और पौलुस ने क्या कहा? मेरा विश्वास है कि यह, मुझे अब पक्का नहीं है कि क्या यह थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय और आठवां पद है या नहीं। यदि हम या स्वर्ग से एक दूत किसी अन्य सुसमाचार को प्रचार करें, यदि एक दूत स्वर्ग से नीचे आकर और वो इसके अलावा किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार करता है, तब यीशु मसीह के नाम में मनुष्य को फिर से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी और सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया। यदि स्वर्ग से कोई दूत, न ही एक अकेला एक बिशप या एक कार्डिनल या एक सामान्य प्रधान या एक पास्टर या कुछ और, यदि एक स्वर्ग से दूत आता है और इसके अलावा दूसरे सुसमाचार का प्रचार करता है, उसे शापित होने दो। यह सही है, क्या ये सही है? उसने जो कहा यही गलतियों 1:8 है, मैं अभी ये सोचता हूँ। तो ठीक है, गलतियों 1:8, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो देखें कि पौलुस ने क्या कहा। अब यहाँ वो कहता है, अब 27वां, मैं सोचता हूँ कि 27वां पद, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। अब सुनना ये क्या है, यह एक भविष्यवाणी है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने पहले लहू से मोल लिया है। किसने खरीदा? वह किसका लहू था? बाइबल ने कहा कि यह परमेश्वर का लहू था। परमेश्वर अपने लहू के साथ, क्या वो सही है? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। बाइबल में कहा गया है कि हम परमेश्वर के लहू से बचाए गए हैं। क्या आप यह जानते थे? निश्चित रूप से यह बचाता है। तो ठीक है, अपने लहू से मोल लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फांडे वाले भेड़िये तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे तुम्हारे ही बीच में से। देखो, वो मनुष्य उसमें से होकर देख सकता है और देखता है कि वो बात आ रही है। बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। बहुत वर्ष बाद, जैसे वह या एक पुरुषों का झुंड जो कि एक संगठन बनाना चाहते थे और कलीसिया से पवित्रता और पवित्र आत्मा को दूर करना चाहते थे और बिशप और पोप और याजकों को वहाँ पर रखना चाहते हैं कि वे ही पवित्र होंगे और कलीसिया किसी भी तरह से जिए जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, और वे याजकों को भुगतान करेंगे और वो उन्हें नरक से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करेंगे और ऐसा ही सब कुछ। और यह एक निकुलियन है और परमेश्वर ने कहा मैं उससे घृणा करता हूँ। अब सुनना, मुझे देखने दो, और तुम कहते हो परमेश्वर ने कहा कि उसने इससे घृणा की। अब देखते हैं कि क्या उसने की। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर एक संगठन से घृणा करता है, क्या यह सही है? अब आप देखें कि असल में वे क्या करने जा रहे थे। आप देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब वहाँ कलीसिया में से होते हुए देखें, क्या वे ऐसा नहीं करते हैं? वह एक संगठन से घृणा करता है। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब पौलुस ने जो भेड़िये कहा, वे निकुलियन बन गए थे। वे लेवी गण, याजक गण की तरह एक याजक गण का रूप लेने की कोशिश कर रहे थे, जो नए नियम की शिक्षा के लिए भिन्न था। आमीन। निकु शब्द, वो यूनानी शब्द निकु का अर्थ होता है जय पाना, जीतना। क्या जय पाना है? आम जनता, पवित्र आत्मा, विश्वासियों के बीच से पुनरुत्थित प्रभु यीशु को उसके चिन्ह और चमत्कार के साथ कलीसिया से बाहर निकालना और मनुष्य के मतदान से चुने गए एक पोप को बनाना या एक शारीरिक कार्डिनल या एक प्रधान को बनाना, ताकि पवित्र आत्मा को आम जनता से दूर करने की कोशिश करे और उसे आदेश देने की कोशिश करते हैं, जिसे एक पवित्र पुरुषों का आदेश कहा जाता है। उन्हें आम जनता के ऊपर रखा जाता है। उन्हें पास्टर नहीं कहना है, जिसका अर्थ है चरवाहे, लेकिन पिता, फादर कहना है, जिस पर यीशु ने कहा तुम इस धरती पर किसी मनुष्य को पिता नहीं कहना। उस बुरी बात को देखा और हमने क्या किया है? ओ, यदि हम रोक सकते थे, काश हमारे पास ये सारी रातें इस तरह से नहीं होती। मैं कल रात को प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय पर ले जाना चाहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वो पुरानी व्यभिचारी स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है, वो वैश्या, और वह कारण वो ऐसी थी क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अनैतिक काम किया था और खुद को विधवा कहा, और वो वैश्याओं की एक माता भी थी। क्या ये सही है? अब हम बस असल में जानते हैं कि यह रोम था क्योंकि वह 7 पहाड़ियों पर बैठी हुई थी और हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही है, उसमें एक पुरुष और पशु की संख्या और इत्यादि। हम यह सब जानते हैं पिछली शिक्षाओं से कि यह कौन थी, लेकिन दुख की बात यह है कि वह वैश्याओं की माता थी। यह यहीं से इसकी शुरुआत है। रोम में मसीहों के एक झुंड के रूप में आरंभ होता है, कहलाने वाले मसीही। सुनना, इससे वास्तविक बनाने में परमेश्वर मेरी मदद करे। इस तरह से एक कलीसिया में मसीहों का एक झुंड वो औपचारिक हो गई है और गिर चुकी है और पीछे चली गई है और खुद को एक संगठन में स्थापित किया है और फिर अंधकार युग में एकजुट हो गई है राज्य के साथ, और राज्य और कलीसिया किस में एक हो गए? मसीही कलीसिया। इसे पवित्र कैथोलिक कलीसिया कहा जाता था। कैथोलिक शब्द, इस शब्द का अर्थ है विश्व संबंधी, वो बड़ी विश्व संबंधी मसीह कलीसिया। और उन्होंने उन लोगों को कहकर बुलाया जो अन्य जुबान में बात करते थे और चिल्लाते और बीमारों को चंगा करते थे और इत्यादि। वे उन्हें धर्म विरोधी कहते और अंत में इसे इतना विवश कर दिया, इतना तक कि किसी को भी इस तरह से आराधना करते हुए पाया गया तो शेरों की मान में फेंक दिया जाता यदि वे कैथोलिक धर्म को अंगीकार नहीं करते। जो इन सैकड़ों वर्षों तक वहाँ पीछे उस सतावट का कारण बनता गया, लेकिन वह कलीसिया कभी मरी नहीं। आप इसे मार नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा कि यह अंत तक जीवित रहेगी और उसके बाद वह इसे जीवन का मुकुट देगा जो सतावट के उन युगों में से होते हुए नीचे आई। तब मार्टिन लूथर युग को जारी रखने के लिए आया और उसने कलीसिया के लिए धर्मीकरण के तहत परिवर्तन को लाया। क्या हुआ जब लूथर मर गया? उन्होंने इसे संगठित कर दिया, इसे एक लूथरन कलीसिया बना दिया। उनके पास एक सिद्धांत था। जब उन्होंने इसे संगठित किया तो उन्होंने क्या किया? इसे पुनः रोमन वाद में फिर से जन्म दिया। यह बिल्कुल सही है। तब पवित्र आत्मा वहाँ से चला गया और वेस्ली ने इसे देखा, और वेस्ली और विटफील्ड और जॉर्ज विटफील्ड और उन दूसरे लोगों में से बहुत से थे, और असबरी और उसमें से कई महान बेदारी लाने वाले लोग थे। उन्होंने उस दिन पर संसार को बचा लिया। उनके पास फिलाडेल्फिया युग में बेदारी थी जिसने इंग्लैंड और संयुक्त राज्य को भी बचाया। उनकी सभाएं हुई जहां उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उन्हें पवित्र शोर मचाने वाले कहा गया। आप जो मेथोडिस्ट हैं जिन्होंने यह किया था, वे परमेश्वर की सामर्थ के नीचे वर्ष में गिर जाते और वे उनके चेहरे पर पानी मारते और उन्हें पंखा करते। यह सही है। और वे इतने नीचे इतनी जोर से झटका देते जब तक कि वे इतना तक उन्होंने कहा कि उन्हें झटके लगे थे। वहाँ लोगों को झटका लगता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नीचे हिल जाते। यही मेथोडिस्ट का इतिहास है। वहाँ से कैकर और इत्यादि आए जो अब उन्होंने इसे संगठित कर दिया। उन्होंने इस मेथोडिस्ट को बनाया प्रिमिटिव मेथोडिस्ट और इस तरह के मेथोडिस्ट और उस तरह के मेथोडिस्ट, जब तक कि ये नीचे होते नहीं चले गए, इतना तक कि मेथोडिस्ट लोग उनके गीतों की किताब से लहू शब्द को बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ एक रात को एक टेलीविजन कार्यक्रम पर मेरी माँ ने मुझे फोन किया। उनका एक मेथोडिस्ट पास्टर था, ठीक यही इंडियाना में कलीसिया में रॉक एंड रोल नाच को सिखा रहा था। कहा, ये शर्म की बात है कि हम इस खूबसूरत कला को देखने में चूक गए जो कलीसिया में होती है। यही एक झूठे नबी में का शैतान है। सही है, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन भाई यही परमेश्वर का सत्य है। मैं बल्कि आपको इस तरह थोड़ा गुस्सा करता हूं और आपको वचन का अध्ययन करवाता हूं। हो सकता है आप परमेश्वर के साथ सही कर लें बजाय इसके कि अंत में नष्ट हो जाएं। शायद आप मुझे अभी पसंद नहीं करते हो, लेकिन किसी दिन आप मेरे चारों ओर अपना हाथ रखकर कहोगे, हाय ब्रैनम, यह सच्चाई है, यहाँ यह यहीं पर है और उसमें जा रहा है, यही है जहाँ वे, यह बस वहाँ है, बाइबल ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। फिर वेस्ली से, यदि वेस्ली ने ऐसा किया, उसके बाद साथ ही पेंटिकॉस्टल आता है और उन्होंने गानों को वापस लाया, अन्य जुबान में बोलना आरम्भ किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जैसे मकई का एक दाना जमीन से बाहर आता है, पहली बात यह सड़ता है, कुछ छोटी पत्तियों को लाता है, उसके बाद यह, आप मकई के खेत में गए होंगे, आप सोचे वह छोटी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं और एक टहनी या गुच्छा बनाती हैं। यह पहला लूथरन था, टहनी या गुच्छा, यह क्या था? मेथोडिस्ट, पराग, भाईचारे का प्रेम, वो सुसमाचार का प्रचार, दूसरों के अंदर पराग का जाना। इसलिए यहाँ तक कि प्रकृति भी इन कलीसिया युगों की घोषणा करती है, मेथोडिस्ट गड़बड़ी से बाहर आ रहा है, या मेरा मतलब है लूथरन गड़बड़ी से बाहर आ रहा है, मेथोडिस्ट उसके भाईचारे के प्रेम को हिलाते हुए और सुसमाचार प्रचार करने के दिन और मिशनरी के दिन संसार का अब तक का सबसे महान मिशनरी मेथोडिस्ट का समय रहा था। ये सही है इसके पराग को हिलाते हुए। वहाँ से क्या हुआ? उस पराग से मक्के की गुठली आई, पेंटिकॉस्टल, वो दाना ठीक उसी तरह से जो चीज अंदर गई थी, ना ही पत्ती ना ही डंठल, लेकिन एक दाना। और अब पेंटिकॉस्टल के उस दाने के ऊपर पूरी तरह से फफूंदी लग गई है, इतना तक कि आप दाने को मुश्किल से ही देख सकते हैं। ये इसे साफ करने का समय है। आमीन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही काम को किया जो मेथोडिस्टों ने किया। एक ने उन्हें एक झुंड में संगठित कर दिया, कहा हम असेंबली ऑफ गॉड हैं। दूसरे ने कहा हम पेंटिकॉस्टल होलीनेस हैं। एक और ने कहा हम वननेस हैं, हम टूनेस हैं, और इसमें से बहुत सारे हैं, और उसमें से बहुत सारे हैं। ओह, वे सवारी को कर रहे हैं, एक कुबड़ ऊंट के पीठ पर, दो कुबड़, तीन कुबड़, हर एक चीज। ओह, वहाँ 60 या 30 या 40, उसमें से विभिन्न संगठनाएं हैं। उन्होंने क्या किया? इसे फिर से रोमन वाद में वापस फेंक दिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया के बपतिस्मा में बपतिस्मा लिया। मैं किसी भी पेंटिकॉस्टल से कहता हूँ कि मुझे इसे दिखाए कि बाइबल में किसी को भी कहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। मैं किसी भी बिशप, कार्डिनल, किसी भी शिक्षक से पूछता हूँ, मुझे ये दिखाए कि वह कभी भी ऐसा था, कभी कैथोलिक कलीसिया के बाहर ऐसा किया गया था। और लूथर इसे अपने साथ ले आया, वह कैथोलिक शिक्षा और बाकी सभी चीजों को इसमें ले आया। मेथोडिस्ट इसके साथ जारी रहा। पेंटिकॉस्टल, आपको शर्म आनी चाहिए, साफ करो, वचन पर वापस आओ, पश्चाताप करो, या तो परमेश्वर धूपदान को आपसे ले लेगा, वो उजाला जो आपके पास है। आमीन। तो ठीक है, पवित्र आत्मा को जो अगुवाई के रूप में है बाहर निकालते हैं और उन्हें मनुष्य के ऊपर पवित्र आदेश देने वाला देते हैं और उन्हें आम जनता के ऊपर रखते हैं, और उन्हें पास्टर, चरवाहे नहीं कहना है, हमें पास्टर कहकर बुलाना चाहिए, चरवाहा जो इस पास्टर शब्द का अर्थ होता है, लेकिन उन्हें फादर, कार्डिनल, आर्क बिशप या जनरल प्रधान कहना है। सच्चे लोग इस बात से घृणा करते थे और परमेश्वर ने उनके लिए इसका समर्थन किया और कहा मैं भी इससे घृणा करता हूँ क्योंकि उसे जनरल प्रधान, आर्क बिशप और पोप होना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्तिगत के साथ कार्य करता है, न ही संगठन के साथ, लेकिन एक व्यक्ति के साथ। अब अजीब तरह से सुनना, जैसे हम नजदीक आ रहे हैं, हमारे पास बस एक और पद है। यहाँ हमारे पास कैथोलिक वाद की शुरुआत के सिद्धांत हैं, प्रेरित उत्तराधिकार। कितने लोग जानते हैं प्रेरितिक? अब कैथोलिक कहता है कि पोप आज पत्रस का उत्तराधिकारी है, प्रेरितिक उत्तराधिकार। ऐसी कोई चीज नहीं है। किस प्रकार से तुम्हारी शारीरिक यौन इच्छा है, ये किस तरह से था कि एसाव और याकूब दोनों एक पवित्र पिता और एक पवित्र माँ से जन्मे थे, और उनमें से एक मसीही था और दूसरा एक शैतान था? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पाप तो पाप है और शारीरिक संबंध तो शारीरिक संबंध है, लेकिन जन्म परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें दुनिया की नींव डालने से लेकर चुनता है। क्या आप ये जानते हैं? रुकना, जब तक हम इन इतिहासकारों को नहीं पढ़ लेते हैं और देखें कि किस तरह एरेनियस, किस तरह वो परमेश्वर को दुनिया की नींव डालने से पहले चुनने के लिए प्रशंसा देता है, कैसे वह संत मार्टिन और वे सारे उसे प्रशंसा दे रहे थे, परमेश्वर स्तुति हो, कहा क्योंकि और लोग उसके बारे में बोलते हुए कहते हैं उसे दुनिया की नींव डालने से पहले चुना गया था। यह वचन है, वे भाई लोग परमेश्वर के साथ व्यवस्था में थे, लेकिन यह पुरानी अंधकार कलीसिया 1500 साल के अंधकार युग में से होते हुए आई है, संपूर्ण चीज को धुआं छोड़ते हुए जैसे दीवट तुलगाता है, उजाला धुंधला हो रहा है, लेकिन यह संध्या के समय में उजाला होगा। प्रभु ने कहा प्रणीतिक उत्तराधिकार, एक के बाद एक, एक पोप, और आपको एक पोप बनने से पहले आपको पोप के वंशज में से होना होगा। ओह मेरे प्रभु, यह मूर्खता है। वो आम जनता, ना ही पवित्र और धर्मी, लेकिन चलो चलो याजक लोग उनके लिए प्रार्थना करें, और उन्हें उनके पापों से बाहर लाए, उनके पापों को क्षमा करते हैं, उनके अंगीकार के लिए उन्हें भुगतान करते हैं। प्रोटेस्टेंट वैसे ही करते हैं, वे बनने की कोशिश करते हैं, पास्टर की पीठ पर थपथपाते हैं और बाकी की दुनिया की तरह जीते हैं, और वह परमेश्वर के बारे में इतना अधिक नहीं जानता है जितना वह बताता है। उन्हें अपनी कलीसिया में बने रहने देता है और उन्हें अपनी कलीसिया का सदस्य कहता है और उन्हें वहाँ बने रहने देता है और उनके लिए दावे के साथ ऐसा कहता है कि वे बच गए हैं। यदि वे फिर से जन्म नहीं लेते हैं तो उन्हें उस दिन पर किस तरह निराश होना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा के आप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह सकता है। इफिसुस की सच्ची कलीसिया इस चमकाए हुए बौद्धिक भाषण के द्वारा भरमाई नहीं गई थी, वह उन्होंने इससे घृणा की। वे भरमाई नहीं गए थे, वे जानते हैं सच्ची कलीसिया भरमाई नहीं गई थी। झूठा प्रकाशन जो इन व्यक्तियों के पास था, जिसे निकलियो कहा गया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ सहयोग नहीं किया था। मुझे बताएं कि आपने ऐसा कहां देखा है? एक याजक जो अंगीकार के कक्ष में है, बाइबल में ऐसा सिखाया गया है। आपने ऐसा कहां देखा है? छिड़काव करना या बाइबल में पाप की क्षमा के लिए सिखाया गया हो? आप कभी भी किसी को अपने पाप की क्षमा के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं? आप कभी भी इसे कहीं देखते हैं संगति के लिए दाहिने हाथ को बढ़ाते हुए और कलीसिया के किताब पर अपने नाम को डालते हुए? वहाँ पर आप इन सभी चीजों को कभी भी कहीं पर देखते हैं? यह क्या है? यह एक याजक गण है या एक पादरी वर्ग है जो वचन के साथ सही नहीं है, और वे निकुलियन है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनसे घृणा करता हूँ, वचन पर वापस जाएं। ओह, यही है। मैं जानता हूँ कि यह कड़क है भाइयों, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यीशु के लिए उस पर उद्गर्व करें। झूठा प्रकाशन वचन के साथ नहीं है, लेकिन उन्हें झूठे बनावटी प्रेरित झूठे भविष्यवक्ता कहा जाता है। लेकिन सच्ची कलीसिया संत पौलुस की मूल शिक्षा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को थामे हुई थी, चिन्ह पीछा करते हुए और वचन की पुष्टि करते हुए जो पौलुस के द्वारा सिखाया गया था। आमीन। मुझे दिखाओ कि परमेश्वर कहाँ कभी जल के छिड़काव की पुष्टि करता है। मुझे दिखाओ कि परमेश्वर कहाँ कभी जल के छिड़काव की पुष्टि करेगा और अन्य भाषा को लाएगा और बड़ी बड़ी चीजों को करना केवल पास्टर के साथ कहीं तो हाथ को मिलाते हुए और किताब पर अपना नाम डालते हुए, और फिर भी तम्बाकू चबाना, धूम्रपान करना, शराब पीना, झूठ बोलना, ताश के पत्तों की पार्टी करना, कुछ मजा करने जाना। ओ दया, यह शारीरिक है, झूठे भविष्यवक्ता मित्र। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर का तरीका पवित्रता है। ये मसीह के देह के प्रत्येक सदस्य को ज्ञात हो जाए। जब तक आप एक पवित्र जीवन नहीं जीते, परमेश्वर आपके बलिदान को अस्वीकार कर देता है। बलिदान पवित्र हाथों से होना अवश्य है, वो है, सही है। वो महायाजक इससे पहले कि वह भी बलिदान को भेंट करने के लिए आ सके, उसे पवित्र होना ही था और समर्पित और अभिषेकित और सुगंधित और हरेक चीज इससे पहले कि वह भी परमेश्वर की उपस्थिति में चले जिससे कि बलिदान को भेंट करे। क्या यह सही है? फिर आप भला यहाँ से कैसे बाहर जाकर और धोखा दे सकते हैं और चोरी कर सकते हैं और उपद्रव कर सकते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ लड़ सकते हैं और इत्यादि सब, और इसी तरह से करते ही जाएं जो आप करते हैं, और फिर आकर कहें हे प्रभु परमेश्वर यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। लोग कहते हैं मैं उन्हें अन्य जुबान में बोलते हुए देखता हूँ। इसका मतलब अब भी ऐसा नहीं है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। इसका मतलब अब भी ऐसा नहीं है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा जीवन है। बाइबल ने कहा बारिश अक्सर धरती के ऊपर आती है इसे तैयार करने के लिए, इसे साफ करने के लिए जिसके लिए यह तैयार होती है। इब्रानियों 6, लेकिन कांटे और कांटेदार पौधे जो प्राय अस्वीकृति के निमित्त होते हैं, जिसका अंत जला दिया जाना है। सूरज धर्मी और अधर्मी पर चमकता है, बारिश धर्मी और अधर्मी पर पड़ती है। बारिश गेहूं की फसल बनाने के लिए पड़ती है, हम ऐसा कहेंगे, और हरेक जंगली घास खेत में होती है। यदि गेहूं को प्यास लगती है तो जंगली घास को प्यास लगती है, और वही बारिश जो गेहूं को पानी देती है जंगली घास को भी पानी देती है। वो छोटा पुराना गेहूं का दाना उसके सिर को ऊपर उठाकर और चिल्लाएगा प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, मैं इस बारिश को पाकर बहुत खुश हूँ। वो छोटी पुरानी जंगली घास चिल्लाएगी परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, मुझे इसे पाकर खुशी हुई। लेकिन उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। यह सही है, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। सातवां पद और उसके बाद हम बंद कर रहे हैं। यह कलीसिया युग का अंतिम है। अब हम लगभग 5 मिनट देर से होंगे या 10, बस 1 मिनट और। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब देखो मित्रों, यहाँ है वो जरिया, आप जय पाते हैं। पहले आपको जय को पाना है, उसके बाद आप फल को खा सकते हैं। यह जय पाने वाले हैं। आपको याद है एक रात को हमारी कल रात की शिक्षा, कुछ भी देखने से पहले यूहन्ना को आत्मा में आना था। और आप यह कहते हुए किस तरह से बैठेंगे, यदि वो बैप्टिस्ट नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, यदि वो पेस्पिडेरी नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, यदि वह ठीक वही नहीं सिखाता जो मेरी कलीसिया सिखाती है तो मैं, आप जय नहीं पाएंगे। आप आत्मा में अभी तक नहीं आए हैं, आप पूरे क्रम से बाहर हैं। आत्मा में आ जाएं, कहें प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, अब मुझ पर कुछ भी प्रकट करें जो आप देखते हैं कि सही है, बस इसे मेरे भीतर लाएं। तब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यह सही है। ध्यान दें, बाइबल के उत्पत्ति में जीवन के वृक्ष के लिए 3 बार बताता है, प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 बार। एक दिन हमने इसे बताया था, याद है कल रविवार को, केवल शैतान वहाँ वचन के हर एक बिंदु से घृणा करता है, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा घृणा करता है वो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य है। वह उत्पत्ति पर हमला करता है क्योंकि इसकी वास्तविकता के लिए, क्योंकि वह लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसा नहीं था, उत्पत्ति उस तरीके से नहीं आई जैसे परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया था। इस सृष्टि और चीजों का कारण कुछ और ही था। फिर वो इस तरह से हमला करता है और वह लोगों को प्रकाशित वाक्य से दूर रखता है, क्योंकि यह प्रकट करता है यीशु को परमेश्वर की नहीं प्रकट करता है और उसे शैतान की नहीं प्रकट करता है, और वह सर्वनाश है और पवित्र की गई कलीसिया की जो महिमा परमेश्वर के घर जा रही है, और झूठे भविष्यवक्ता का अपराध, और वे सभी जो झूठे हैं और सारी चीजों को करते हैं, आग की झील के अंदर डाले जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह उन्हें इससे दूर रखता है, लेकिन याद रखना दोनों ही स्थानों में स्वर्ग में जीवन के पेड़ के लिए बताता है। अब आइए इसे बस 1 मिनट के लिए लेंगे, और अब पेड़ संत यूहन्ना 6 अध्याय, यदि आप इसे चिन्हित करना चाहते हैं, यीशु ने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूँ। अब याद रखना, अब हम यहाँ चिन्हों के रूप में इन 2 खंभों का उपयोग करेंगे। तो अब बंद करने से पहले, अभी अब मेरे दाहिने हाथ पर बगीचे में का वो पेड़ है जिसे जीवन का पेड़ कहा गया, मेरे बाएं हाथ पर बगीचे में का वो पेड़ है जिसे ज्ञान का पेड़ कहा गया। कितने लोग जानते हैं कि बाइबल कहती है कि जीवन का पेड़ और ज्ञान का पेड़ है। अब मनुष्य को जीवन के पेड़ से जीना था, ज्ञान के पेड़ को नहीं छूना था, क्या यह सही है? और पहली बार जब उसने इसे छुआ तो उसने अपने आप को सृष्टिकर्ता से खुद को अलग कर दिया, उसने परमेश्वर के साथ उसकी संगति को खो दिया जब उसने अपने पहले ज्ञान को चबाया। अब जोर लगाकर सोचें, और आप अपने नोट्स को लिख रहे हैं, मैं आपको समय दूंगा ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इससे चूक जाएं। यीशु संत यूहन्ना 6 में वे एक झरने से पी रहे थे और अपने हाथों को ऊपर उठा रहे थे, वहाँ अपने ऊपर एक मजाक को ले रहे थे कि उनके पिताओं ने आत्मिक चट्टान से पिया और इत्यादि। उसने कहा मैं वो चट्टान हूँ जो जंगल में था, और उन्होंने कहा यहाँ तुम कह रहे हो कि तुम अब्राहम से पहले थे और तुम 50 साल से अधिक उम्र के मनुष्य नहीं हो, और तुम कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है, हम अब जानते हैं कि तुम पागल हो, तुम शैतान हो, देखा। उसने कहा इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ, मूसा के साथ झाड़ी में था जो जलती हुई झाड़ी थी, मैं हूँ, इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ, ना ही मैं था। अब आप लोग कहते हैं कि अद्भुत कार्य के दिन बीत गए, आपको उस वचन को कहना पड़ेगा मैं वह महान था जो मैं था, समझे, ना ही मैं था या मैं होऊंगा, मैं हूँ यह हर एक समय के लिए है, वह अनंत है, वो शब्द मैं हूँ एक अनंत है, उनके सारे युग हर समय के लिए, उन सभी 7 सुनहरे धूपदान, हर एक कलीसिया, हर एक स्थान, हर एक हृदय, मैं हूँ, ना ही मैं था या मैं होऊंगा, मैं ठीक अभी वही हूँ जैसा मैं हमेशा था, समझे, हमेशा मैं हूँ। उन्होंने कहा हमारे पिता, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें पता है कि तुम शैतान हो। कहा, हमारे पिताओं ने जंगल में 40 वर्षों के अंतराल जंगल में मन्ना खाया था। और यीशु ने कहा, और वे हर एक जन मर गए। यह सही है, वे सभी मर चुके हैं, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूँ जो परमेश्वर से स्वर्ग की ओर से आई है। यदि एक मनुष्य इस रोटी को खाए तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या यह मनुष्य अपनी देह को खाने के लिए देगा? उन्होंने कहा, अब वो पागल है, यकीनन बहुत ही ज्यादा। जीवन की रोटी जो जीवन के पेड़ से थी, जहाँ से वे अदन के बगीचे से खा रहे थे, वो जीवन का पेड़ था। अब यदि जीवन का पेड़ एक व्यक्ति था, तब ज्ञान का पेड़ एक व्यक्ति था। अब कहते हैं कि सर्प के पास बीज नहीं था। यदि जीवन पुरुष के द्वारा आता है तो मृत्यु स्त्री के द्वारा आती है, तो ठीक है, वह मृत्यु का पेड़ थी। जैसे ही इस एक ने उसे अपवित्र किया, जो कि उसने सर्प ने किया था, उसने कहा, सर्प ने मुझसे छल का काम किया। यह सही है, सर्प नहीं, वह सभी पशुओं में सबसे कपटी था। वह एक चिंपांजी और एक मनुष्य के बीच का था। एक जानवर का बीज एक स्त्री के साथ संकरण नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह जो व्यक्ति था, वह इसकी अगली कड़ी थी, और परमेश्वर ने उस पर ऐसा शाप डाला कि उसने उसे सीधा अपने पेट के बल डाल दिया और बिना पैरों के कर दिया, और उसमें से हर हड्डी को ले लिया और इसे हर एक चीज से बदल दिया जो एक मनुष्य की तरह थी। विज्ञान इसे एक क्षेत्र में खोदने की कोशिश कर रहा है। यही परमेश्वर के रहस्यों में छिपा हुआ है, परमेश्वर के स्वर के बीच में है, वहाँ आपका प्रकाशन है। उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया जो केन था। क्या यह सही है? शैतान का पुत्र। यदि वे नहीं होते तो वह कहाँ, वह बुराई कहाँ से आई? क्या आदम्बे से, जो परमेश्वर का पुत्र था, शैतान से आया, जो उसका पिता था, और उसने हत्या कर दी। पहला हत्यारा शैतान था, शैतान का पुत्र। देखो उसके बाद क्या घटित हुआ। केन का वंश देखो, वहाँ से होते हुए उस पीढ़ी से जो उसके बाद आई, केन के बाद जो हर एक वैज्ञानिक और महापुरुष थे। बाइबल को पढ़ें। उन्होंने घर बनाए, उन्होंने धातु के साथ काम किया, और वे वैज्ञानिक थे। लेकिन हर एक जो शेष से आता है, जो हाबिल मर गया, एक यीशु का प्रतीक था, मर गया, और हाबिल मर गया, और शेत ने उसका स्थान लिया। मृत्यु, दफन होना और पुनरुत्थान, वो नम्र किसान भेड़ के चढ़ाने वालों के जरिए से आते हैं। अब यीशु ने कहा, तुम्हारे पिताओं ने जंगल में मन्ना खाया और वे सब मर गए हैं, लेकिन मैं जीवन की वह रोटी हूँ। कौन सी जीवन की रोटी? अदन से, कि हर एक मनुष्य इस रोटी को खा सकता है और कभी नहीं मरेगा। अब परमेश्वर ने उस जीवन के पेड़ के इर्द गिर्द इसकी रक्षा करने के लिए एक दूत को रखा, जिससे कि कोई भी इसे छू न सके, जब तक कि वे उस पेड़ में से नहीं खाएंगे और हमेशा जीवित रहेंगे। क्या यह सही है? क्योंकि उन्हें इस पेड़ पर लगातार खाते रहना था और मरना था। क्या यह सही है? कारण जब तक वे उससे खाते थे, उनकी मृत्यु होती गई, और वैसे ही निश्चय ही तुम मरोगे, क्योंकि तुम उस ज्ञान के पेड़ से खाते हो। अब आइए, अब उस ज्ञान के पेड़ को देखें। देखो इसने क्या किया है। अब आइए देखते हैं कि इसने क्या किया है। पहली चीज, आइए देखते हैं, ये ठीक है, आइए उस एक को देखते हैं कि वे इसने बारूद का आविष्कार किया। ये हमारे सहयोगियों को मारता है। यह सही है, उस बारूद से एक दूसरे को मार डालते हैं जो ज्ञान के पेड़ से हैं। अगली चीज जो हमने की है, आइए देखते हैं, हमने मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया जो ज्ञान के उस पेड़ से हैं। यह बारूद की तुलना में अधिक मारता है। ओह जी हाँ, अब हमारे पास हाइड्रोजन बम है। परमेश्वर किसी को भी नष्ट नहीं करता है, मनुष्य अपने ही ज्ञान से खुद को नष्ट कर लेता है। लेकिन वह सब जो परमेश्वर का है, परमेश्वर इसे फिर से ऊपर लाएगा। परमेश्वर कुछ भी नहीं खोता है। यीशु ने ऐसा कहा, यह सही है, वह जो इस रोटी को खाता है उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर से उठा खड़ा करूंगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। अब परमेश्वर, वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान के पेड़ पर से खा रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी वे इस पेड़ को प्राप्त कर सकते हैं तो वे हमेशा जीवित रहेंगे। तो अब बजाय इसके एक दूत बाहर हो कि वहाँ उन्हें इस पेड़ से दूर रखे, या वहाँ बाहर है, वह उन्हें साथ वाले इस पेड़ के लिए लेकर जा रहा है। कलीसिया के दूत, 7 कलीसियाएं उन्हें यीशु मसीह के नाम पर वापस लाते हुए, जो जीवन का पेड़ है, जो परमेश्वर के अदन के बगीचे में खड़ा है, मेरे प्रभु, मुझे आशा है कि आप यह समझ गए होंगे। जीवन का पेड़ परमेश्वर के अदन के बगीचे में खड़ा है कि आप उसके भागीदार बन सके और परमेश्वर के पुत्र और कन्या बने और हमेशा के लिए जिएं। वो जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और कभी भी न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में पार हो चुका। भाइयों बहनों, अब मैं यकीनन मैंने आपको काटा छाटा है, आपको चोट पहुंचाई है। मेरा इसे इस तरह से करने का अर्थ नहीं था, समझे? परमेश्वर यह जानता है, लेकिन मुझे यह इस तरह से करना है ताकि आप यह देख सके कि हम कहां पर हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि हमारे पास रहने के लिए बहुत अधिक समय बचा है। मैं आपको मसीहत से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं। यह ऐसा नहीं है, आप लोग परिस्थितियों के शिकार हुए हैं। वे कुछ भी और करना नहीं जानते हैं। उन सब के माता पिता ने हमेशा ही ऐसा ही किया है, कलीसिया से जुड़ना और इत्यादि। लेकिन भाई, हमारे जाने से पहले एक बात को बोलूंगा, मुझे इस एक और हवाले को देने दो। भविष्यवक्ता ने कहा, क्या आप भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हो? बाइबल ने उन्हें सुनने के लिए कहा। भविष्यवक्ता ने कहा, वहाँ एक समय आएगा कि न तो दिन और न ही रात होगी, लेकिन यह एक प्रकार से अंधकार सा दिन होगा, लेकिन संध्या के समय में ठीक सूर्य डूबने से पहले यह उजाला होगा। क्या यह सही है? अब देखो कि हमारे पास क्या था। अब आइए बस देखें किस तरह से सूर्य, भौगोलिक रूप से सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से। क्या यह सही है? यह पश्चिम में ढलता है। काश मेरे पास मैं कल रात को नक्शा लेकर और आपको दिखाऊंगा। जब यरूशलेम में पवित्र आत्मा नीचे उतर आया तो उसने एक सिद्ध रूप से आंकड़ा 8 बनाया उसके जीवन पथ को। यह सीधे आयरलैंड के अंदर चला जाता है, वापस दाएं ओर घूमते हुए सीधे वहां पर और पश्चिम तट पर आता है और ठीक वापस फिर से उतरता है एक सिद्ध आंकड़ा 8 जहां पर सुसमाचार चला गया। अब रोजाना के जीवन ने सूर्य के साथ यात्रा की है, कितने यह जानते हैं? आपको ये सिखाया गया है और इसे जानते हैं। हमारे पास सबसे पुराना रोजाना का जीवन चीन है और तब वहाँ से होते हुए पार करके सीधे पूर्वी के अंदर आता है। और जब पवित्र आत्मा न ही SUN सूरज नहीं, लेकिन SON पुत्र, जब सूरज, वो SUN सूरज रात के कोहरे और धुंध में से होते हुए चमकना आरंभ करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज कहाँ पर है, वह जीवित हो जाएगा, क्योंकि सारा वनस्पति जीवन सूर्य के द्वारा जीता है। हम यह जानते हैं। आप ठीक घास के एक तिनके के ऊपर ठोस पत्थर को रख सकते हैं और अगले वसंत ऋतु में सबसे मोटी घास कहाँ पर होती है? उस ठोस पत्थर के छोड़ पर सीधे बाहर की ओर निकलते हुए। क्यों? इसमें जीवन होता है जो वहाँ नीचे होता है। आप सच्चे जीवन को छिपा नहीं सकते हैं। वह छोटा सा जीवन, जैसे ही वो जान जाता है कि सूरज वहाँ से होते हुए नहला रहा है, तब ये लगभग आधे शहर के खंड को अपनी तरह से गर्म कर देगा उस ठोस पत्थर के छोर से बाहर आते हुए। यहाँ तक कि वह हवा में अपने सिर को ठीक ऊपर की ओर तान सकता है और परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। आप जीवन को छिपा नहीं सकते हैं। यह सही है, जीवन, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप इसे छिपा नहीं सकते हैं। कोई तो रोने लगता है जब आपको जीवन मिलता है। अब सारी चीजें जो अब मरी हुई हैं और वे छोटे बीज फूटने लगते हैं, गूदा बाहर आने लगता है और यह मर चुका होता है, लेकिन जीवन अभी भी वहाँ पर होता है। अब जब सूरज वसंत में चमकना आरंभ होता है तो छोटे फूल ऊपर आने लगेंगे, हर एक चीज फिर से अपने सिर को ऊपर की ओर तान लेगी, किनारों के नीचे से बाहर निकलते हुए, लट्ठों के नीचे से बाहर आते हुए, चट्टानों के नीचे से बाहर आते या फिर से खड़े हो जाएंगे और फिर से जिएंगे। क्या यह सही है? क्योंकि SUN सूरज चमक रहा है। अब किसी दिन SON पुत्र चमकेगा जो अनंत जीवन का लेखक है, और वह सब कुछ जो उसके लिए अंकुरित किया गया है वो अनंत जीवन के लिए है। उसने कहा, मैं इसे अंतिम दिन में उठ खड़ा करूंगा। आपने देखा कि मेरा क्या मतलब है? अनंत जीवन अंतिम दिनों में उठ खड़ा होगा। यदि वे आपको समुद्र में दफनाते हैं या वे आपकी देह को जला देते हैं और इसे पृथ्वी के चार हवाओं में उड़ा देते हैं, तो परमेश्वर इसे अंतिम दिन में उठाकर खड़ा करेगा। यदि आपको एक भूखे शेर के पेट को भरने के लिए डाल दे या एक जलती ज्वाला के खड्डे के अंदर जो उस सारे 16 पेट्रोलियम और लौकिक प्रकाश और हर एक चीज को आप में से बाहर कर दे, परमेश्वर इसे उठाकर खड़ा करेगा। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आमीन। परमेश्वर इसे उठाकर खड़ा करेगा। अब यहाँ पर देखें, अब यदि हर एक मनुष्य स्त्री के द्वारा मरता है तो हर एक मनुष्य पुरुष के द्वारा जीता है। उस प्रकार के जीवन में स्त्री का भागीदार होना, आप जानते हैं कि आप मर जाएंगे, इसका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप मर जाएंगे। और जितना निश्चित रूप से आप इसमें से लेंगे तो आप जिएंगे, वहाँ से बाहर कोई रास्ता नहीं है, आपको जीना ही है। आमीन। यदि वह मृत्यु को सकारात्मक बनाता है तो यह जीवन को सकारात्मक बनाता है, यही वो एकमात्र तरीका है कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं जीवन को होने के लिए। अब भविष्यवक्ता ने कहा कि ये संध्या के समय उजाला होगा। अब देखो, उसने कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि अंधकार सा होगा, इसे दिन या रात नहीं कहा जाएगा, यह एक प्रकार की बदली होगी, धुंध, ठंडा दिन, लेकिन फिर भी पुत्र उजाला दे रहा होता है, बहुत ही दूर ऊपर वो कोहरा और बदली और इत्यादि, पुत्र उजाला दे रहा है, ये इतने उजाले को देता है कि आप चल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किसी तरह से यहाँ वहाँ जा सकते हैं और इत्यादि, लेकिन फिर भी यह तेज नहीं होता है, सुंदर दिन, समझे। अब उस दिन में शायद ही कुछ भी जी सकता है। यदि आप कुछ भी अंदर की ओर बोएंगे जहाँ सूर्य उस तक नहीं पहुँचता है, ये अविकसित हो जाता है, क्या यह सही नहीं है? आप किसान लोग ये जानते हैं, दाने को छाया में या कहीं पर रख दें, देखें यह इसे अविकसित कर देता है। ब्रेड, आपको आपके गेहूं के द्वारा ये पता होगा, आप इसे वहाँ पर रख दें, और यदि आपके पास बहुत ज्यादा गर्मी है, ओह ठंड और बरसात, यह इसे अविकसित कर देता है। तो ठीक, यही कलीसिया के साथ इन युगों के बारे में बात रही है, यह अविकसित रही है, यह संप्रदाय के द्वारा अविकसित हो गई है। किताब पर अपने नाम को डालो। हमारे पास यह जानने के लिए काफी उजाला था कि एक परमेश्वर है, मैं इसके लिए खुश हूँ। हमारे पास यह जानने के लिए काफी उजाला था कि एक मसीह है, वहाँ एक न्याय आने वाला है। हमारे पास उजाला था तो हम किताबों पर अपने नाम को डालते हैं, अपने पास्टर के साथ हाथ मिलाते हैं इत्यादि, और ऐसा ही किया है, सब ठीक है। लेकिन अब ये संध्या का समय है, अब रोजाना का जीवन पूर्व से पश्चिम तक आया है, और अब हम पश्चिम तट पर हैं, हम आगे नहीं जा सकते, हमने पार कर लिया है, हम फिर से पूर्व में लौट आए हैं, हम आगे नहीं जा सकते, हम पश्चिम तट पर हैं। अब बाइबल ने कहा संध्या के समय उजाला आ जाएगा। अब संध्या के समय में किस तरह का सूरज चमकता है, क्या यह सुबह के उगते सूरज से अलग है, यह वही सूरज है, क्या यह सही है? तो ठीक है, तब परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी, अब हम इसे लेने जा रहे हैं, इसे पकड़े रहें। ठीक यहाँ पर इस युग में बाइबल ऐसा कहता है कि मैं इसे साबित करूँगा इन कलीसिया युगों में, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कि संध्या के समय में पश्चिम में एक उजाला यहाँ आगे आ जाएगा, जो फिर से धार्मिकता के सूर्य को वापस लाएगा, जो उसके पंखों में चंगाई के साथ होगा, और वही चिन्ह और वही अद्भुत कार्य जो यहाँ पीछे पूर्व में किए गए थे, पश्चिम में यहाँ किए जाएंगे, जो अंतिम दिनों में एक और पवित्र आत्मा से उड़ेलने के द्वारा होगा। ये संध्या के समय में उजाला होगा, महिमा का रास्ता आप अवश्य ही पा लेंगे, उस पानी के मार्ग में, ये आज का उजाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में दफन हुआ। जवान और बूढ़े, अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा निश्चित रूप से अंदर प्रवेश करेगा, संध्या का उजाला आ गया है, यह एक सच्चाई है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। ओह, यह संध्या के समय में उजाला होगा, महिमा का रास्ता आप अवश्य ही पा लेंगे, उस पानी के मार्ग में, ये आज का उजाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में दफन हुआ। जवान और बूढ़े, अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा निश्चित रूप से अंदर प्रवेश करेगा, संध्या का उजाला आ गया है। वही बात जो पतरस ने कही, ये बात आप जान लो कि परमेश्वर ने इस उसी यीशु को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जो कि प्रभु और मसीह दोनों था। तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो, उसने कहा, और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसा कि मैं एक दिन डॉक्टर के दवाई के पर्चे पर बोल रहा था, लोग डॉक्टर के दवाई के पर्चे को लेना पसंद नहीं करते। यदि उसके पास एक इलाज है जो आपकी बीमारी का उपचार करेगा और आप असफल, आप इसे लेने से मना करते हैं, तो ये डॉक्टर की गलती नहीं है कि तुम मर जाते हो। नहीं श्रीमान, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने इसे लेने से मना कर दिया है। और अब यदि डॉक्टर एक दवाई के पर्चे को लिखता है और वह और आप उस दवाई के पर्चे को एक अनाड़ी औषधि विक्रेता के पास ले जाते हैं और वह इसमें ऐसा कुछ डाल कर देता है जो इसमें नहीं होना चाहिए, यह आपको भी मार देगा, क्या यह सही है? उस डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है जो इतना तक वह जानता है कि उस दवाई के पर्चे में की दवाई में इतना ही जहर है जो आपके शरीर में मौजूद कीड़े को मारने के लिए होता है और इसमें वहाँ पर्याप्त विष औषधि जिससे कि उस जहर को अस्त व्यस्त न करे जो तुम्हें नहीं मारेगा और यह स्तर तक होगा। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में विष औषधि को डालते हैं तो इसमें रोगी की सहायता नहीं होगी। अधिक मात्रा में विष डालना यह उसे मार डालेगा। इसे संतुलित होना है। सवाल यह है, क्या गिलाद में कोई बाम नहीं है? क्या वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है? नबी ने कहा, फिर मेरी बेटी की बीमारी ठीक क्यों नहीं हुई? कलीसिया के साथ क्या मामला है? क्या मामला है कि हमारे पास बहुत सी पुरानी बीमार कलीसिया है, क्योंकि हमारे पास कुछ अनाड़ी औषधि विक्रेता हैं जो गलत दवाई के पर्चे को दे रहे हैं। ये सही है। उसने कभी नहीं कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वह दवाई की पर्ची में क्या कहा गया? यह पत्रस है। कितने लोग जानते हैं उसके पास राज्य की चाबियां थी। यीशु ने ऐसा कहा, वो क्या कहेगा? दूसरे शब्दों में उसके पास दवाई की पर्ची के लिए शाही कलम थी। जब उन्होंने बाहर इस सारे शोरगुल को सुना, वे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अन्य जुबान में बोल रहे थे और उनके पास क्या ही समय था। और उन्होंने कहा, ये लोग पूरी तरह से नई मदिरा पिए हुए हैं। पत्रस ने कहा, ये पूरी तरह नई मदिरा पिए हुए नहीं है जैसा कि आप मानते हैं। देखते हुए यह दिन का तीसरा पहर है, लेकिन यह वही है जो नबी योएल के द्वारा कहा गया था, यह अंतिम दिन में पूरा हो जाएगा। यहोवा यूं कहता है, मैं सारे देह पर अपनी आत्मा को ढेल दूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और मेरे दास और दासियों पर मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं वहां ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर चिन्ह को दिखाऊंगा, आग और धुआं और भाप। और यह पूरा हो जाएगा कि जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। और इसके अलावा उसने आगे दाऊद के बारे में कहा। उसने कहा, उस महान पुरुष दाऊद ने इसे पहले से देख लिया और उसने कहा, इसके अलावा मेरी देह आशा में विश्राम करेगी क्योंकि वह मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न ही वह अपने पवित्र जन को चढ़ते हुए देखेगा। मुझे खुले रूप से कहने दो भाइयों, महान पुरुष दाऊद के शब्दों को, वे दोनों मर चुके हैं और दफन हुए और उनकी कब्रें आज तक हमारे साथ हैं। देखो, लेकिन वह एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसने मसीह के पुनरुत्थान को देखा। ये बात आपको ज्ञात होने दो कि यह यीशु जिसे तुमने अपने दुष्ट हाथों से क्रूस पर चढ़ाया है, परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों बनाया है। जब उन्होंने इसे सुना तो उनके हृदय छिद गए और कहा, लोगों और भाइयों, या डॉक्टर शिमोन पत्रस हमें दवाई की पर्ची लिख कर दें, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम पाप का इलाज चाहते हैं। ओह, अब उसे देखना उसने क्या कहा। अब आप यह देखना कि ये कलीसिया कहां पर से पटरी से उतर गई है। उसने कहा, एक मिनट रुकना, मैं एक दवाई की पर्ची लिखने जा रहा हूं और यह एक अनंत दवाई की पर्ची होगी। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतान के लिए होगी और उनके लिए जो आगे आने वाले हैं और जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। उसने क्या कहा? उसने इसे कैसे ठीक किया? क्या जैसे ये कैथोलिक के पास है? क्या जैसे ये बैप्टिस्ट के पास है? क्या जैसे ये मेथोडिस्ट के पास है? उनमें से हर एक जन ने कुछ जोड़ा है या उसमें से कुछ निकाल लिया है? पेंटिकॉस की तरह उन्होंने जोड़ा या निकाल लिया। लेकिन उसने क्या कहा? तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, एक अनंत दवाई की पर्ची। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतान के लिए है। यह अंत तक हर एक कलीसिया के युगों में से होते हुए रहेगा। इसे हर एक को देना। हे परमेश्वर, मेरे हाथों को साफ करे, मेरे हृदय को साफ करे प्रभु। हो सकता है यदि मेरे पास के हर एक मित्र इसे लेते भी हैं, तो मैं उसी प्रकार से दवाई की पर्ची को दूं जिस तरह से डॉक्टर ने इसे देने को कहा है। यही वो कारण है कि आपके पास बहुत सी मरी हुई कलीसिया हैं, बहुत सारे मरे हुए सदस्य हैं। आप विषनाशक औषधि को जोड़ रहे हैं और इसमें से बहुत कुछ निकाल रहे हैं। इतना तक दवाई की पर्ची अपने आप में बिल्कुल वैसी रही नहीं, या यहाँ तक कुछ भी चंगाई नहीं देगी। हाथों को मिलाते हैं और कलीसियाओं से जुड़ते हैं और छिड़काव को करते हैं। ओह दया, यह दवाई की पर्ची नहीं है, यह तो मृत्यु है। यदि आप जीवन को चाहते हैं और पवित्र आत्मा को चाहते हैं, तो परमेश्वर ने जो कहा है उसका पालन करें, दवाई की पर्ची को लें। यह ठीक उसी तरह से है जैसे उसने कहा, इसमें न जोड़ें या इसमें से निकालें। फिर यहाँ प्रकाशित वाक्य पर यहाँ ठीक आकर और कहा, जो कोई भी निकालेगा या जोड़ेगा वैसे ही उसका भाग निकाला जाएगा, उस जीवन की किताब से बाहर निकाला जाएगा। ओह मेरे प्रभु, यही मुख्य डॉक्टर है। ओह मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते? ओह, उस महान युग के लिए जो इफिशियंस युग है, जब ये विधर्म बस अंदर की ओर रेंगना आरंभ करता है, जिससे कि संगठनों को बनाए और पास्टर और डिकन, मतलब डिकन नहीं लेकिन पास्टर, पास्टर नहीं लेकिन कार्डिनल, बिशप, पोप, कलीसिया के प्रधान, पवित्र आत्मा को बताते हुए, कलीसिया को बताते हुए, अब तुम्हारे पास यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, मालिक या बॉस कौन है? पत्रस से एक बार पूछा गया था, कहा तुम यीशु के नाम में अब और प्रचार नहीं कर सकते, तुम चाहो तो प्रचार कर सकते हो लेकिन यीशु के नाम में नहीं। ओह शैतान उस नाम से घृणा करता है। पत्रस ने कहा, क्या यह मेरे लिए सही है? बाइबल ने कहा, पत्रस भरा हुआ था संप्रदाय से, ओह आह पवित्र आत्मा से, कहा रुकना, मैं जनरल प्रधान से मिलूंगा यह देखने के लिए कि वह मुझे इस बारे में क्या करने के लिए कहता है। मैं आपको बताता हूँ, क्या आप जानते हैं कि असेंबली ऑफ गॉड में निर्णय को करने के लिए एक मनोचिकित्सक होता है और उनके मिशनरियों को लेने के लिए पहले एक मनोचिकित्सक के सामने ले जाते हैं यह देखने के लिए कि क्या वो व्यक्ति मानसिक रूप से एक मिशनरी बनने में सक्षम होगा। पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ गॉड, कितने लोगों ने कभी ऐसा सुना है? निश्चय ही यह सब में से होते हुए आया है, हर कोई जानता है। यकीनन वहाँ पर मिशनरी को देखने वाला और निर्णय को करने वाला कौन है? मनोचिकित्सक या पवित्र आत्मा? देखो यही आपको मिलता है मनुष्य होने पर। देखो मनुष्य निर्मित शिक्षाएं, मनुष्य निर्मित सिद्धांत, रुके रहना जब तक हम उस पेंटिकॉस्टल युग तक आगे नहीं पहुँचते हैं। परमेश्वर उस चीज को जला डालेगा, बिल्कुल उतना ही निश्चित है जितना दुनिया को। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ सचमुच, और आप देखेंगे यह पूरी तरह से दूर तक आगे आग को पकड़ता जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन किसी महिमामय दिन वह आ जाएगा। और याद रखना, सुनना, वहाँ कलीसिया के सात युग हैं। क्या यह सही है? वहाँ सात कलीसिया युग हैं। और आपको याद होगा जब वे वहाँ चले गए दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए, कुछ पहले घड़ी में सो गई, क्या यह सही है? दूसरे घड़ी यकीनन मरी नहीं, सो गई। तीसरे घड़ी, चौथे घड़ी, पांचवे घड़ी, छठी घड़ी और सातवीं घड़ी में एक आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो। क्या हुआ? वे सारी कुआरियां जो सो गई थी जाग उठी। बादल रहित संध्या के उजियाले चमकने लगेंगे, परमेश्वर की हर एक संतान अब अपने हाथों को उठाए। क्या आपको कलीसिया के पुराने गीत पसंद है? ओह अब अपने आसपास किसी से हाथ को मिलाएं, इस तरह से आसपास, ये अच्छा है। कहें मैं आपसे मिलूंगा भाई। अब हर कोई इसे गाए। हर एक जन अपने हाथों को उठाने के साथ अब आइए सिर को झुकाने के साथ आइए इसे कहें, प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर प्रकट बना, देह में मेरे पाप को दूर करने के लिए, मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से कर रहा हूँ, भरोसा करते हुए उस योग्यता में जो यीशु मसीह की है, जो मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आमीन। कल रात 7 बजे परमेश्वर ने चाहा तो हम इस स्मुरना कलीसिया को ले लेंगे। अब हमारे सिर झुके हुए हैं। अब कोमलता से सब लोग मधुरता से